ये अंतिम सेशन रहेगा तो हम लोग आधे घंटे कुछ पढ़ के फिर प्रश्न उत्तर रखेंगे, जिससे कि जितना अधिक इंटरैक्ट कर सके। हम लोग श्रीमा के वरदान, उस आश्वासन पर रुके थे जो वो अशुपति को देती हैं कि मैं आऊंगी और इस मृत्युतुल्य जीवन के बीच में आकर अमृतत्व के बीज बोऊंगी भी और उनकी खेती भी करूंगी। इसके बाद सावित्री में अशुपति पाशर्म में चले जाते हैं और श्री माँ का जन्म, बड़ी होती हैं, ये सारा वर्णन है उनका। और इस विवरण में हम कई समानताएं पाएंगे माता जी के पार्थिव जीवन से इस भौतिक जगत में। जब वो जन्म लेती हैं तो बड़ी होती हैं, वो कई सारी चीजें हम लोग देखेंगे बड़ी सिमिलर सी, और उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। और फिर जब वे बड़ी होती हैं, फिर क्वेस्ट, वो सत्यवान मिलते हैं उनको। और सत्यवान कौन है? मानव आत्मा जो जोड़ना चाहती है भगवान और संसार को। बड़ा सुंदर वर्णन है कि सत्यवान का वर्णन क्यों करती हैं। वो जगह जगह जाती हैं, बहुत सारे उनको साधु सन्यासी मिलते हैं। एक अद्भुत कैंटो है दी क्वेस्ट, जिसमें पूरे संसार में माँ भ्रमण करती हैं, सावित्री भ्रमण करती हैं उस की उसकी तलाश में, जिसके साथ मिलकर वो धरती पर अपने कार्य को पूरा करेंगी। तो उसमें बड़े ऋषि मुनि उनके आश्रम जाती हैं, वहाँ बैठती हैं कुछ क्षणों के लिए, रहती हैं कुछ दिनों के लिए, साधु सन्यासी, ऐसे से सन्यासी जो सब कुछ छोड़कर एकमात्र तप में लग गए हैं। ये सबको देखती हैं माँ, मिलती हैं, लेकिन किसी को स्वीकार नहीं करती। वो स्वीकार किसको करती हैं? जंगल में सत्यवान। और सत्यवान कहता है कि मेरी एक समस्या है कि जब मैं भगवान की तरफ जाता हूं तो संसार को खो देता हूं, और जब मैं संसार की ओर मुड़ता हूं तो भगवान को खो देता हूं। और सत्यवान वह कड़ी ढूंढ रहा है जिसके द्वारा ही वो इन दोनों को जोड़ सके। और वही मनुष्य जो कड़ी बनना चाहते हैं, जो केवल अपने निज की मुक्ति के लिए नहीं बल्कि इस संसार में दिव्यता को उतारना या उसको जोड़ना या एक आदर्श जीवन, ये संसार सुंदर हो, आदर्श हो, उसकी अभीप्सा धारण किए हुए हैं, माँ उनका वरण करती हैं। सत्यवान इज द ह्यूमन सोल कॉट इन द नेट ऑफ इग्नोरेंस एंड डेथ। मेरे विचार से थोड़ा सा उसको वहां पर ट्यून इन करना पड़ेगा। नहीं है, ठीक है, हाँ वही बाई चांस अगर जरूरत पड़े तो। हाँ, अगर मेरे ख्याल अभी बस बैठ जाइए, जो आवश्यकता पड़ी तो देखेंगे। और सत्यवान का वर्णन करके आती हैं, और बड़ा सुंदर वो बुक है द बुक ऑफ लव, हम लोग उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। और जब आती हैं तो बुक ऑफ फेट, उन्होंने जिसका वर्णन किया है वो तो मृत्यु ने उसको अपना भोजन बनाया हुआ है। तो मृत्यु कहती है, वो नारद कहते हैं अशुपति के पैलेस में आकर, अशुपति के जब सावित्री लौट कर आती हैं और बताती हैं कि मैंने सत्यवान का वरण किया है, उसी समय नारद आते हैं और रानी पूछती हैं कि बहुत उचित समय पर आप आए हैं और आप बताइए कि इसने जिसको पसंद किया है, जिसे विवाह करना चाहती है, वो कैसा है। तो अशुपति बताते हैं कि वो एक ज्वेल है, एक हीरा है इस धरती का, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन केवल एक समस्या है, और वो समस्या है कि वो भाग्य के वश है, मृत्यु के वश है। देखिए सिंबल है, एक वर्ष के बाद सत्यवान मस्ट डाई। और तब उनकी माता कहती हैं रानी सावित्री, राजकुमारी सावित्री की, कि तू जा, तू चेंज कर, ये अपनी चॉइस बदल ले, हम लोगों ने कल पढ़ा था वो। और वो कहती, नहीं, जो मैंने चुना है वो मैं चुनूंगी, यदि भाग्य और मृत्यु मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं उनसे लड़ूंगी। ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि जो मैंने चुनाव किया है वो मैं चुनाव पर स्थिर हूं, अडिग हूं, और आगे जो भी आएगा उससे मैं लड़ूंगी। तो एक बार माता जी जब चुन लेती हैं, इसमें दो संकेत हैं। एक तो हमें भी वैसा ही होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को चुनते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ समस्या आई, कठिनाई आई, कहते हैं अरे दूसरा भगवान ढूंढो, फिर दूसरा भगवान ढूंढते हैं, फिर समस्या जीवन में, अज्ञान के जीवन में आएगी आएगी, फिर हम तीसरा भगवान ढूंढते हैं। तो इसको कहते हैं, जैसे होती है ना विंडो शॉपिंग, लोग जाते हैं जगह देखते हैं, दुकान अरे ये साड़ी बहुत अच्छी है, खरीदते नहीं है, थोड़ी देर देखते हैं, आनंद लेते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारी साड़ियां मन में खरीद लेते हैं, असली में क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि दाम ज्यादा है, जो पसंद आती है उसके दाम ज्यादा है। तो वैसे ही हम लोग करते हैं गुरु शॉपिंग। एक गुरु के पास गए तो वो माँ श्री अरविंद क्या चाहते हैं हमसे, अहंकार को ऑफर करो, ये दाम तो बहुत ज्यादा है ये चलो दूसरे के पास जाओ, कोई हमें सिंपल फॉर्मूला बता दे। तो करते करते हम अंत में क्या होता है कि हमने साड़ियां तो बहुत देख ली, मार्ग बहुत सारे देख लिए, चले नहीं। जबकि हमें कैसा होना चाहिए, स्थिर। मां क्या कहती है, एक बार जो चुनाव किया, चुन लिया, चले, चलते जाएं, चलते जाएंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे। लेकिन जो एक बार चुनते हैं, फिर एक साल, दो साल, पांच साल चला, फिर कहीं छोड़ दिया, फिर कहीं और चले, तो आदमी अंत में भटकता रहता है। तो एक चीज हमें इससे ये मिलती है सावित्री के चुनाव से। और दूसरी चीज ये होती है कि जब हम एक बार माँ हमें स्वीकार करती हैं, तो फिर वो गिव अप नहीं करती हैं। सावित्री जब सत्यवान का वरण करती हैं, तो उसके बाद मृत्यु हो, भाग्य हो, कुछ भी हो, भगवान गिव अप नहीं करते। यही तो उनकी अद्भुत बात है, क्योंकि अगर वो गिव अप कर दें तो फिर भगवान कैसे। अगर वो कहने लगे कि अरे ये तो चुन लिया मैंने, लेकिन ये आदमी तो सही नहीं है, ये मनुष्य करते हैं ऐसे, वो जब चुन लेते हैं तो सब जान के चुनते हैं। और ये चीज हम लोग पहले सत्र में देख रहे थे, कई ऐसे लोग हैं। माताजी एक बार किसी ने माताजी से कहा, आपके यहाँ इतने सारे लोग हैं, कुछ तो बिल्कुल निकम्मे, इनको आप आश्रम में रखती क्यों हैं, निकाल क्यों नहीं देती। माताजी कहती हैं अच्छा तुम मुझे बताओ कौन से हैं ये निकम्मे लोग, तो 25 लोगों की लिस्ट बना के ले गए। तो माताजी सब के नाम के आगे, ये तो ये करता है, ये करता है, ये करता है करके लास्ट में आती हैं, बोलती हैं इसको तुम निकम्मा क्यों कह रहे हो। माने सबको माने टिक करते चली गई कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी बात गलत है। तो लास्ट में जब पहुंचती कहती ये तो बिल्कुल निकम्मा है। माँ बोलती नहीं, ये स्टाम्प लगाता है ना, बड़े सुंदर ढंग से लगाता है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है इतना काफी है स्टाम्प लगाता है, सुंदर ढंग से लगाता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने देता है। तो कहते हैं बेकारी माँ ने जिसको स्वीकार किया वो कहीं चला जाए, उसके बाद वो मृत्यु हो, भाग्य हो, वो मान करके चलती हैं कि इस पर मेरा अधिकार है और मैं इसको इसकी चरम गति तक पहुंचा के रहूंगी। लेकिन बस एक चीज है, मनुष्य को अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वयं को उनको सौंपना होता है। माँ कहती हैं कि ग्रेस डज नॉट टर्न अवे फ्रॉम एनी वन, बट देर आर मेनी हु टर्न अवे फ्रॉम ग्रेस। मनुष्य मुड़ सकता है, दूर वो ये नहीं करती जबरदस्ती। जिस अगर व्यक्ति अपनी इच्छा से, ये भगवान जरूर चाहते हैं, और इसका बुक ऑफ लव में बड़ा सुंदर वर्णन है, वो पेज ही खुला हुआ है। इफ thy ग्लैंस कैन dwell content ऑन अर्थली soil, एंड दिस celestial summary ऑफ delight, thy golden body dally with fatigue, oppressing with its grace our terrain, while the frail, sweet, passing taste of earthly food delays thee, and the torrent sleeping wine, descend, let thy journey cease, come down to us. तो ये सावित्री से कहते हैं कि सत्यवान कि मैंने तो तुम्हें वरण कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुमने मुझे वरण किया है कि नहीं। यदि तुम भी मुझे वरण करती हो, तो वरण करने पहले कंडीशंस है कि मेरे पास कोई महल नहीं है, छोटी सी झोपड़ी है, जैसे सबरी कहती ना, कुछ भी नहीं है ना, मेरे पास कोई स्वर्ग के भोग हैं तुमको देने के लिए, और ये जो जल नदी में बह रहा है किनारे स्ट्रीम में, यह मैं रोज तुम्हें अर्पण तर्पण कर सकता हूं, और मेरी परिस्थितियां भी ऐसी हैं, थेस्ट रूफ झोपड़पट्टी है। तो यदि आपको ये सब स्वीकार हो, क्योंकि देख के तो आपको लग रहा है कि आप धरती की नहीं हो, सर की देवी हो, यदि आपको स्वीकार हो तो आइए, पास ही में मेरा घर है। देखिए आप कई बार माता जी शेरविन कहां कहां पहुंच जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत धनी भी हैं और बहुत दान पुण्य करने में विश्वास करते हैं, लेकिन माँ शेरविन नहीं जाते हैं। वो कहां पहुंचेंगे इसका हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं सत्यवान, विल दाउ नाउ नॉट मेक दिस मॉर्टल ब्लिस दाई स्फीयर। आप तो अमृतत्व के आनंद को जानती हैं, मैं क्या दे सकता हूं अपनी ओर से, पार्थिव जगत किया थोड़ा सा सुख, मॉर्टल ब्लिस, आप इसे स्वीकार करेंगी, आएंगी। डिसेंड ओ हैप्पीनेस विद दाई मून गोल्ड फीट, एनरिच अर्थ्स फ्लोर्स अपॉन हू स्लीप वी लाई, By my delight and thy own joy compelled, enter my life, thy chamber and thy shrine. तो एक और तो इसमें यह है कि माँ एक बार स्वीकृति दे देती हैं तो बंद के चली आती हैं, लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि हमारा क्या भाव होना चाहिए। हम लोग कई बार कल्पना भी नहीं करते, सोचते भी नहीं, माँ श्री अरविंद का चित्र होता है घर में भी लगा देते हैं, टांग देते हैं, जगह जगह रख देते हैं, लेकिन कैसे रखना चाहिए हमें, वे कौन है? हम लोग कहते हैं माँ है, जगत जननी है, राज राजेश्वरी है, एक क्षण को कल्पना करें कि वास्तव में साक्षात वो साक्षात ही है। माँ कहती है मेरे चित्र नहीं है, चित्रों में मैं हूं। अगर वे हमारे घर आए, अगर पता चले कि माँ आ रही है आज, तो घर को हम कैसा रखेंगे, और मां को जहां बैठने का स्थान होगा कैसा रखेंगे उसको। लेकिन चूंकि मां ने स्वीकृति दे दी है वो जाएंगी नहीं, तो हम लोग कई बार कहते हैं ना कि टेकिंग द डिवाइन फॉर ग्रांटेड, कि अब तो वो रहेंगी हमारे पास, वो तो हैं हमारी अपनी, तो जैसे भी रखो कैसे भी रखो। पर अगर हम इस भाव से जिए कि हर दिन हमारा वही दिन के अनुसार समान है जिस दिन पहली बार हमें मां के बारे में पता चला था, सत्यवान उसी प्रकार से मां का वर्ण करता है। और अगर हम वैसा वर्ण करते हैं तो बहुत ही अद्भुत बात है। मां तो स्वीकार करती हैं तो नहीं जाती हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे लोगों ने भगवान को किस किस तरह से रखा है, जगह जगह जा करके, मैंने तो देखा है कई जगह, दुख भी होता है, लेकिन मां ने स्वीकृति दी है, मां आई है। तो अगर हम भी थोड़े से सचेत रहें कि माँ आई हैं, इसका अर्थ क्या है हमारे अपने जीवन में, और उस कमरे में जिसमें माँ का चित्र लगाया है कैसी बातें हों, किस तरह से उसका वातावरण हो, कैसा वहाँ का भौतिक आसपास जो चीज़ें हैं वे कैसी हों, क्योंकि वे राज राजेश्वरी हैं, वास्तव में तो उनको मिलना चाहिए ये सब धरती पर। तो अगर हम लोग उसको कर सकें, कम से कम अपने जीवन को सुंदर बना सके, सुंदर विचार, सुंदर भावनाएं, तो कितना सुंदर होगा। तो सावित्री आती हैं और जब उनसे कहा जाता है कि ये तो सत्यवान सब कुछ अच्छा है लेकिन ये मृत्यु और भाग्य के वश है, अधीन है, तो सावित्री कहती है कोई बात नहीं, मैं युद्ध लड़ूंगी। और उस युद्ध में पूरा मृत्यु से जो युद्ध है मां लड़ती हैं, लेकिन उस युद्ध में कैसे हमें तैयार होना है इसका वर्णन बुक ऑफ योग में आता है। मां योग करती हैं मनुष्य के लिए और फिर वो मनुष्य के लिए रास्ता दिखाती हैं, स्थापित करती हैं कि इस योग को तुम करो, और इस योग को शेरविन ने नाम दिया है सनलिट पाथ, सूर्यालोकित पथ। ये पथ मां मनुष्य के लिए खोलकर उसको देती है, और थोड़ा सा उसका वर्णन हम लोग पढ़ेंगे फिर हम लोग रुकेंगे प्रश्नोत्तर के लिए कि वो सनलिट पाथ क्या है। एक बड़ी सुंदर इसमें पैसेज है और मुझे लगता है कि वो पैसेज हम सबको अपने घर में निकाल करके लगा के रखना चाहिए, रोज याद करना चाहिए। और सबसे सुंदर बर्थडे गिफ्ट है ये पैसेज। तो ये पैसेज क्या है, सावित्री इसको सुनती हैं अपने ही अंदर आकाशवाणी के रूप में, और यह पथ वह चलती हैं। ये इस पथ का वर्णन अदरवाइज अगर जानना है तो माँ की एक पुस्तक है प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस, हम सब ने पढ़ी होगी निश्चित रूप से। तो उसमें माँ योग के किस पथ पे चलती हैं, इससे अद्भुत पुस्तक मैंने नहीं देखी, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन से अद्भुत। पूरी योग यात्रा माँ की अपनी योग यात्रा है, उनकी डायरी नोट्स हैं, पर उसको अगर हम पढ़ें और उसका अनुसरण करें, वही सनलिट पाथ है, वही सूर्यालोकित पथ है। और उसका थोड़ा सा वर्णन सावित्री में पेज 476 पर आता है। माँ के लिए एक प्रोग्राम दिया जाता है, माँ उस पर चलती हैं, फिर उसको वो मनुष्य को देती हैं। श्री अरविंद से किसी ने पूछा था, ये प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में माँ क्यों प्रार्थना कर रही हैं और किसको कर रही हैं? माँ तो माँ है, जगत जननी है। तो श्री अरविंद बताते हैं कि इस प्रकार की प्रार्थनाएं हमें रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलेंगी, जहां डिवाइन ही प्रार्थना कर रहा है। तो उसके दो कारण हैं, एक तो माँ पूरी सृष्टि के लिए प्रार्थना कर रही हैं उससे एक होकर, और दूसरा माँ हमें सिखा रही हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, योग क्या होता है। योग की परिभाषा है ये, बिना शब्द का प्रयोग किए, रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, पहला सूत्र, ये 10 सूत्री कार्यक्रम, रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। सब कुछ होता है, हम लोग हंसी मजाक जीवन में बहुत कुछ होता है अच्छा बुरा, लेकिन जिस दिन आदमी लक्ष्य भूल जाता है उस दिन समझिए कि वो रास्ता भटक गया। लक्ष्य याद है तो पहुंच जाएगा। होता है ना, बच्चे खो जाते हैं मेले में, वो स्टोरी कौन सुना रहा था बड़ी सुंदर सी, मुल्क राज आनंद की, हाँ सुभाष भाई
रिपीट करेंगे,
हाँ, कि बच्चा माँ के साथ मेले में गया तो ये खिलौना चाहिए वो खिलौना चाहिए वो खिलौना चाहिए, माँ समझा रही है मैं नहीं ले सकती, ये समस्या वो समस्या, नहीं नहीं मुझे ये खिलौना चाहिए, फिर रोने लगता है, रोने रो रो के कहता है तुम बड़ी खराब हो, गंदी हो, अच्छी माँ नहीं हो। अब मेला है, बात बात में माँ से बिलख के 2 मिनट को दूर होता है माँ को सताने के लिए। इतने में मेला है, अचानक दृष्टि से ओझल हो जाता है, इधर उधर भागा दौड़ी जो भी। अब जब वो मुड़ के देखता देखता है मां नहीं दिखाई दे रही, तो रोना शुरू करता है। अब रोना शुरू करता है तो इस बार तो कोहराम मचा देता है, मेले से इधर उधर दुकान के सब लोग आ जाते हैं, क्या चाहिए तुझे, ये खिलौना ले ले, वो ले ले, ये ले ले, और रो रहा है, जितने खिलौने दो और रो रहा है। अरे कौन सा खिलौना लाके दूं तो चुप होगा, मां मां चाहिए, मां कहां खो गई। ये जो चीज है हम इसका मूल्य नहीं समझते कई बार, बाकी सब चीजें अपनी जगह, लेकिन लक्ष्य, रिमेंबर वाई द केमिस्ट, किस लिए हम आए हैं, इसी के लिए आए हैं, हमारी आत्मा ने इसका चुनाव किया है ट्रांसफॉर्मेशन के योग का, और उस पर भगवान की स्वीकृति है, ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। बाकी चीजें भूल जाएं, लोग कई बार बोलते ना मेमोरी मेरी खराब हो रही है, मैं उनसे पूछता हूं माता जी याद हैं, हाँ हाँ, श्री अरविंद का नाम याद है, हाँ याद है, बाकी सब भूल जाओ क्या है उसमें, याद करने योग्य नहीं था। लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, इतना केवल हमें याद रह जाए जीवन भर माँ कैसे पुकारना। और मैंने देखा है लोगों को, एक अभी भी एक लेडी है जो 10 वर्ष पहले शायद उनको ब्रेन ट्यूमर इतना बड़ा निकला होगा ब्रेन के अंदर, तो उस समय उनका फिर भी ठीक थोड़ा उन संज्ञान था, उन्होंने कहा नाना मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, अब ब्रेन ट्यूमर इतना बड़ा हो तो कर्तव्य करेगा। तो उसने क्या हुआ है, वो ऑपरेट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, तो ब्रेन ट्यूमर बढ़ता रहा होगा, बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसी अवस्था में चली गई जहां उनको कुछ नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बरसों से हैं ऐसी, पता नहीं क्या हुआ, रुक गया ब्रेन ट्यूमर बढ़ना, वो उस अवस्था में चली गई हैं। खाना पीना खाएंगी, किसी से कोई परिचय नहीं, लेकिन माता जी का चित्र पकड़ा दो घंटों देखती रहेंगी और मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पर बनी रहेगी, हमेशा मुस्कान। मित्र शत्रु कौन क्या कुछ नहीं, आप उनसे कुछ बोलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं, वो हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। माता जी का चित्र पकड़ा दो देखती रहेंगी उसको, कितनी अद्भुत अवस्था। ये भी एक योग है। बाहर से देखने से आदमी बोले अरे क्या अवस्था है, और ब्रेन ट्यूमर भी रुक गया है, उसने कहा होगा ये तो कोई और ही चीज है चल रही है, मैंने अपना काम कर दिया। क्या काम किया, बाकी चीजें उसने हटा दी उनकी चेतना से, छोड़ दिया क्या, केवल मां। तो ये रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, ये नहीं भूलना चाहिए, बाकी सब हम भूल जाएं। पांडिचेरी जा रहा है आदमी, अब सोचिए रास्ते में कोई मिला बातचीत की, कभी होता है ना लोग उतर भी गए, चलो थोड़ा नागपुर में भाई साहब के यहां थोड़े दिन संतरे खा के जाएंगे, कोई बात नहीं। याद जरूर रहना चाहिए जाने को निकले हो पांडिचेरी, वो भूल गए तो प्रॉब्लम है। अचानक 7 दिन बाद देखा छुट्टी खत्म, अच्छा भाई साहब हम चलते हैं वापस धार लौट के, अगली बार जाएंगे पांडिचेरी, ये नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज है रिमेंबर वाई दाउ केमिस्ट, इंस फाइंड आउट दाई सोल रिकवर दाई हिट सेल्फ। पहला स्टेप इस योग का है फाइंड आउट दाई सोल, हिडन छिपी हुई है, किस चीज से छिपी है, एक परत हृदय के पीछे और एक लिड जो सिर के ऊपर है। और पाने का तरीका शेरविंद कहते हैं एस्पिरेशन के द्वारा, डिवोशन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अभिप्सा के द्वारा, हृदय में जो ये परत है वो खुल जाती है। और जब हम साइलेंस में जाते हैं तो ये सिर के ऊपर जो लिड है वो भी खुल जाता है, तो भगवान तो फिर सर्वत्र हैं। और ये परत किस चीज की बनी है, हमारे ही पूर्व धारणाएं, पूर्व आग्रह, पूर्व आकांक्षाएं, कामनाएं उन्हीं से बनी है, अटैचमेंट्स, डिजायर। तो अगर इसको हमको परत को हल्का करना है तो इन चीजों को कम करना है, और यदि ये चीजें बढ़ती रहेंगी तो परत और मजबूत होती जाएगी। फिर हम लोग बोलेंगे भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो तो बेचारे अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन बलात् नहीं, हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं। तो यहां पर इन साइलेंस सीक गॉड्स मीनिंग इन दाई डेप्थ। तीसरी चीज क्या करनी है, जब भी मौके मिलते हैं, मां कहती हैं हर इंसान को ऐसे क्षण अवसर दिए जाते हैं जब उसके आसपास कोई नहीं रहता, हम लोग फिर से उसको अनेकों प्रकार की व्यर्थ की चीजों से भर देते हैं। टीवी होगा, गाने होंगे, विचार होंगे, अंतर्द्वंद होगा, हम भर देते हैं उसको, कोना छोड़ते नहीं भगवान के लिए। भगवान कहता है आह अभी मौका मिला है। एक बड़ी अच्छी छोटी सी कहानी है, भगवान की डायरी का एक पन्ना। मनुष्य तो डायरी में लिखता है ना आज ये हुआ वो हुआ, भगवान की डायरी का एक पन्ना। तो भगवान कहते हैं वो सुबह सुबह उठा मेरा भक्त, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, उसने सुना भी नहीं, अंगड़ाई ली सीधा बाथरूम में चला गया, मैं प्रवेश करूं उसके पहले ही उसने द्वार बंद कर दिए, मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। अरे मैं तो उसको बचपन से जानता हूं, देखा है, मुझसे कैसी शर्म, पर द्वार बंद कर दिया उसने। खैर मैं वेट करता रहा बाहर आएगा, आया, फिर से मैंने कहा गुड मॉर्निंग, पर भागा वो शीशे के सामने, तेल फुलेल सब लगाने लगा, परफ्यूम लगाई, कंघी की, बैग उठा के नीचे गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन है, भोजन की थाली पर बैठा, अच्छा बुरा कहने लगा और मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे कहा भी नहीं कि तुम भी खा लो ब्रेड का एक टुकड़ा। और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं नाश्ता कर ले, नाश्ता करके ऐसा भागा और गाड़ी में बैठा कि मुझे तो दूसरी गाड़ी हायर करनी पड़ी पहुंचने के लिए उसके ऑफिस। ऑफिस में मेरी एंट्री ही बैन थी, कोई ना कोई बिजनेसमैन, कोई ना कोई व्यक्ति आते ही जा रहे थे। जब भी मैं अपना कार्ड बैठूं तो वो कहता था भगवान के लिए अभी फुर्सत नहीं है, बाद में मिलूंगा, जब शाम को घर लौटूंगा तब मिलूंगा। फिर शाम हो गई, घर आया, पत्नी पर बिगड़ने लगा, चाय नहीं बना के रखी तुमने, मेरे को देख ही नहीं रहा है। मैंने कहा मैं चाय बना देता हूं, पर नहीं, उसको तो एक विशेष चाय ही चाहिए। और मैंने कहा कोई बात नहीं, चाय पी के थकान दूर हो जाएगी तो मैं उससे बात करूंगा। लेकिन उसके बाद उसने सामने पता नहीं क्या एक डिब्बा पड़ा था, एक बटन दबाया और अनेकों अनेकों दृश्य सामने आने लगे। वे चीजें दिखाई जा रही थी जो मुझे भी नहीं पता थी और उन पर ऐसी एनालिसिस हो रही थी मानो सब वहां सत्य जानते हो, लेकिन सभी के सभी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे थे। कह रहे थे इसके अनुसार कल क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। और मैं देखता था मैंने तो ऐसा प्लान नहीं किया है, मेरा प्लान तो कुछ और है, लेकिन इन ये सब जानने का नाटक कर रहे थे। और करते करते रात हो गई, सो गया चिंताओं के बिस्तर पर। यहां पर क्या है, जब हमें क्षण मिले, अवसर मिले, कोई आसपास ना हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, तो मां कहती लर्न टू बी क्वाइट। कोई आवश्यक नहीं कि बकबक करना है, लर्न टू बी क्वाइट। और क्वाइट्यूड में क्या करना है, अपने ही अंदर झांकना है। कोई मुहूर्त नहीं होता भगवान को याद करने का, लोग अक्सर सुबह करेंगे या शाम को करेंगे, अच्छी बात है, पर केवल सुबह शाम क्यों, जब अवसर मिले। अक्सर लोग कहते हैं काम करते समय मैं नहीं याद कर पाता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब काम नहीं होता तब याद करते हैं क्या, वो पहली बात है, वो बात की बात है, जब काम करते हुए नहीं याद होता है तो बहुत दूर की बात हो गई। जब काम नहीं करते हैं उस समय हम याद करें, लर्न टू बी क्वाइट, इन साइलेंस सीक गॉड्स मीनिंग इन दाई डेप्स, भगवान का क्या प्रयोजन है, मुझसे क्या चाहते हैं। मेरा मिशन तो एक जगह है, भगवान का क्या मिशन है मेरे अंदर। देन मॉर्टल नेचर चेंज टू द डिवाइन, ओपन गॉड्स डोर, एंटर इन टू हिज ट्रांस। कितने लोगों के द्वार हम खोलते हैं इसके लिए उसके लिए। ओपन गॉड्स डोर, एक दरवाजा है अंदर, उसको खोल के अनंत में डूब जाना। मां कहती है चाबी तुम्हें दी गई है, चैत्य ही वो चाबी है। और जब तूफान आता है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, तूफान आ रहा है चलो चलो घर के अंदर हम लोग बैठ जाए, आज सुबह बात हो रही थी ना, अगर बहुत हवा चली तो हम लोग कमरे में बैठ जाएंगे, लेकिन अगर ताला लगा हो तो कैसे बैठेंगे। तो माता जी कहती रोज खोलो, कमरा खोलो, साफ रखो, खुला छोड़ो, तो जब तूफान आएगा, मुसीबत आएगी, तो ऑटोमेटिकली चले जाओगे। इसलिए नहीं कि मुसीबत कल को ना आए इसलिए मैं खोल के रखूं, नहीं, ये तो आनंद की चीज है। ओपन गॉड्स डोर, एंटर इन टू हिज ट्रांस, कास्ट थॉट फ्रॉम दी दैट निम्बल एप ऑफ लाइट। बहुत सारा मानसिक उलझन, विचार, विमर्श, एनालिसिस, इससे नहीं भगवान का ज्ञान होता है, से कुछ भी नहीं पता चलता। ये तो पानी है, कितना मत लो मक्खन नहीं निकलता इसमें से। तो क्या करना है, इसको किनारे करो, भगवान की गहराई में उतरो, यही ध्यान है। ध्यान क्या है, अपने ही आत्मा की नीरव गहराइयों में उतरते जाना। कौन सी चीज रोकती है उतरने से, वो सारा नॉइज जो बाहर हो रही है। और वो कौन सी नॉइज है, वही चीजें जो सारे दिन हमें प्रिय लगती हैं, वही तो नॉइस करती हैं मन के अंदर। और क्या नॉइस करती है, अब देखिए जब कोई किसी से प्रेम करता है यंग एज में, बच्चे, वो कहीं भी जाएंगे उनको ठीक याद है कि SMS करना है, फोन करना है, ये सब उनको याद है, सब कुछ हो रहा होगा क्लास में बैठे बैठे। क्यों, बिकॉज देयर इज लव। जब भगवान से हम प्यार करेंगे तो कैसे भूलेंगे, क्यों नहीं जाएंगे अंदर, ध्यान क्यों नहीं होगा। जिसको प्यार करते हैं उसका तो ध्यान स्वाभाविक ही होता है। किसी को किसी यंग एज में 16 17 18 साल 19 साल के लड़के को बोलना पड़ता है कि तू देख, तू जिसको अपनी मंगेतर का जरा ध्यान कर, कहेगा मम्मी वही तो सोचता रहता हूं मैं, आपको पता नहीं है, आपको बताने की जरूरत है, दिन भर यही सोचता रहता हूं। ये क्या है, ध्यान है। वही लड़का जो आज ये कर रहा है, कल बड़ा होके जब भगवान की ओर मुड़ेगा तो ऐसा ही प्यार करेगा। इसलिए निराश मत होइए, ये उम्र के अनुकूल कर रहा है और इसमें ये क्षमता है ध्यान की। देखिए पॉजिटिव साइड देखिए, ऐसा ध्यान खाना भूल जाता है, पीना भूल जाता है, दिन रात व्हाट्सएप और इतना ध्यान, जब ये भगवान की ओर मुड़ेगा तो भगवान को हर क्षण व्हाट्सएप जाएगा, भगवान कैसे हो, मैं अच्छा हूं, तू कैसा है, अरे आपके बिना क्या मजा है, मजा नहीं आ रहा, ये चलेगा एसएमएस। क्योंकि ये ध्यान और क्या है, जिसको प्यार करते हैं वो ध्यान तो होगा ही होगा। और अगर ध्यान नहीं हो रहा, इसके दो कारण है, हमने वो बांध रखा है सौ डोर से, हर चीज दिमाग में आ रही है सिवाय भगवान के, मुन्ना कैसा होगा, गुड़िया कैसी होगी, काम कैसा चल रहा होगा। ये भगवान से प्यार करना, उस अंदर उतरना, जब हम भगवान के ऊपर ध्यान करते ना, भगवान हमारे जीवन की हर चीज अपने ऊपर लेते हैं, वैसे भी लेते हैं, आपको मैं बता रहा हूं, हालांकि इसलिए नहीं करना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है भगवान इसलिए कि, लेकिन जब आप भगवान की ओर इस भाव से मुड़ते हैं, वो आपके जीवन में, हमें लगता है ना हमें अपनी समस्याओं को सुलझाना है और वो उसको लेके सिर पर घूमते रहते हैं। आप हम जब वो काम करें जिसके लिए हम बने हैं, भगवान की प्राप्ति, तो हमारे जीवन की जो नैया है उसको भगवान ठीक चलाएंगे। गीता में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है, योगक क्षेम वहां में हम, LIC ने अब उसको एडॉप्ट तो कर लिया है लेकिन ये ओरिजिनल जो है ये कृष्ण जी का है। और वो कब है, तू जब योग करेगा तो बाकी तेरा योग क्षेम वहां में हम, मेरी जिम्मेदारी है। ये पुरानी प्रॉमिस है भगवान की और ठीक करते हैं सब कुछ, बच्चे की पढ़ाई, विवाह, आगे उसकी सब कुछ वो देखेंगे। कितनी स्टोरीज हैं महर्षि अरविंद के जीवन से जुड़ी, लोग डॉक्टर हैं, मरीज को देख छोड़ के चले गए 15 अगस्त छोड़ के, मतलब कि सब ठीक ठाक रहना चाहिए, रात को तकलीफ होती है और श्री अरविंद आते हैं, हाथ रखते हैं, ठीक हो जाता है, कहते अरे आपने, आप चले गए थे रात को तकलीफ हुई तो बड़ा चिल्लाया, तो बाबा जी जो फोटो में है वो पता नहीं कैसे वो आ गए, हाथ रखा ठीक हो गया मैं, और अनेकों अनेकों ऐसी स्टोरीज। आपको जाना है क्या होना है जीवन में, ये भगवान निर्णय करेंगे और ले जाएंगे बिल्कुल बड़े सुंदर ढंग से। मेरे अपने थोड़ा एक शेयर करूँगा, जब मेरे बच्चे को पढ़ने जाना था इंग्लैंड, तो उसके ना केवल धन की व्यवस्था की भगवान ने, पर वो तो चलो एक बात है, एक बड़ी अद्भुत बात हुई, मेरा इंग्लैंड का वीजा रिफ्यूज़ हो गया था। तो जब उसके मन में आया कि इंग्लैंड जाना है, मैंने कहा बेटा मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इन्होंने लिख रखा है 10 साल तक मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, तू पढ़ेगा तो अगर बाई चांस कोई समस्या हुई तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर जाना हो। तो फिर मैंने कहा खैर एनीवेज यू ट्राई, जो तुझे करना आगे भगवान देखेंगे। तो फिर मैंने माँ को सब ऑफर कर दिया, तो अभी उसका इंग्लैंड जाने का हुआ भी नहीं है, 6 महीने बाद मुझे चिट्ठी आती है बिना कुछ प्रयास के, हर एक्सीलेंसी द क्वीन, वहां से चिट्ठी आती है, आपका जो वीजा का एप्लीकेशन हमने मना किया था, 10 साल बैन किया था, नहीं आप वो गलत था, आप आ सकते हो, वीजा ले सकते हो और बिना फिर से दोबारा धनराशि दिए हुए आपको वीजा दिया जाएगा। तो जैसे ही आया तो बेटा कहता है देखा अब तो पक्का जाने का सैंक्शन, मैंने कहा सैंक्शन तो वैसे भी था, तो वो आ गया। उसके बाद घटनाक्रम क्या कुछ ऐसा बना बिना कुछ प्लानिंग के, ये देखिए भगवान की प्लानिंग और मनुष्य की प्लानिंग, मैं जो प्लानिंग कर नहीं सकता था कि मेरा पहले US जाने का ट्रिप हुआ, फिर रस्ते में UK में भी उन्होंने बुलाया, तो UK में जब मैं गया तो मेरा 12 सितंबर को खत्म हो रहा है पूरा सीरीज 1 हफ्ते का, और ये सब पहले बन चुका है, टिकट आ चुका है मेरा, उसके बाद इसका सिलेक्शन होता है और इसको 12 सितंबर को वहां पहुंचना है। तो लिटरली एयरपोर्ट पर मैं इंग्लैंड में उसको रिसीव करने के लिए खड़ा हूं, ये मैं कभी नहीं कर सकता था, मतलब पहली बार वो बाहर जा रहा है और एक जो पेरेंट्स नॉर्मली चिंता करते कैसे जाएगा कहाँ जाएगा, भगवान ने ये ऐसा अरेंज बिना कुछ बोले, मैंने तो बोला भी नहीं, मैंने वो था ही नहीं संभव, और वहां पर खड़ा हूं, वो आता है मैनचेस्टर के लिए, सब कुछ तैयार है। पहले मैंने उसको बोला था अच्छा मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा कैजुअली, बोला नहीं नहीं मैं बड़ा हो गया हूं। मैंने कहा हाँ वो तो है ठीक बात है, अच्छा नहीं लगेगा पापा छोड़ने जाएंगे, लेकिन घटना ऐसी हुई कि लिटरली मैं उसको छोड़ने गया और कमरे में जाकर के सावित्री पढ़ी, माँ का ब्लेसिंग पैकेट लगाया, तो कहता है अब से मैं कभी नहीं बोलूंगा ये तो बिल्कुल मतलब सोच के परे कि एक्चुअली ऐसा हुआ कि लेकर के रिसीव करके जाकर के। और ऐसी कितनी घटनाएं जीवन में लोगों के कि भगवान देखभाल करते हैं। एक बार 15 अगस्त को कार्यक्रम था, बेंगलोर की बात बता रहा हूं, तब मैं एयरफोर्स में था, तो कार्यक्रम में उन्होंने 15 अगस्त को मेरा नाम डाल दिया एक इसमें इनविजिलेशन के लिए, एग्जाम था उसके लिए इनविजिलेटर। तो मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई, मैं वहां सेक्रेटरी था बेंगलोर भवन में सेंटर में, मैंने कहा ये श्री अरविंद का बर्थडे छोड़कर मैं ये काम करूं ये संभव नहीं है, और एयरफोर्स वाले आपको ये सब बातें सुनकर के नाम हटा दें ये भी संभव नहीं है। तो मैंने निर्णय ले लिया जो होगा वो मुझे सर्विस से निकाल देंगे, कोई बात नहीं मैं जाऊंगा। मेरे मित्रों ने कहा दो तीन जो जिनको पता था क्या कर रहे हो उसमें क्या है, मैंने कहा नहीं ये काम माँ का काम है इसको मैं नहीं छोड़ सकता, तो मैं चला गया, किसी को कुछ नहीं बोला। मेरे एक दो मित्रों को पता था कि ऐसा मैंने किया है, वो सब जब सबका नाम आ रहा है इनविजिलेशन का इस कमरे में, तो बड़े परेशान कि अब क्या होगा हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वो आते मेरा नाम आया स्किप, और मुझे आज तक नहीं मालूम, बोलते तूने क्या किया था, मैंने कहा कुछ नहीं किया था। आज तक ये मिस्ट्री है कि मेरा नाम स्किप कैसे हुआ, मेरी जगह कौन गया, क्यों गया, कैसे गया, और ना मैंने पता करने की चेष्टा की। तो भगवान छोटी से छोटी चीज में हमारी इंटरवीन करते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं हम ही जिम्मेदार हैं, तो जब हम जिम्मेदार हैं तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है तो बड़ा समझदार हो गया है। जब बच्चा कहता है मैं करूंगा अपने आप, तो मम्मी पापा क्या करें, मन तो करता है उनका करने का, पर कहते कोई बात नहीं तू बहुत समझदार हो गया तू कर अपने आप कर, पर जब हम कहते हैं माँ मैं तो वही अदना सा बालक हूं नहीं जानता, मेरा काम है तुम्हारा नाम लेना मैं वो करूंगा, बाकी काम अपने आप कहने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कास्ट थॉट फ्रॉम दी दैट निम्बी लेप ऑफ लाइट इन हिज ट्रेमेंडस हश स्टिलिंग दाई ब्रेन हिज वास्ट ट्रूथ वेक विद इन एंड नो एंड सी। मन को शांत कैसे करें इन हिज ट्रेमेंडस हश, भगवान की उपस्थिति, भगवान के आने का संकेत ही ये होता है कि अपने आप सब शांत हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं श्री अरविंद की, किसी घर में शादी हुई है, लोग गए हैं नीचे, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, घर ये वो देख रहे हैं, अचानक बेटा और बहू बाहर आते हैं कमरे के। अब देखिए क्या होता है, अरे 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 बेटा बहू आ गए, सब छोड़ करके टकटकी लगा के देख रहे हैं, अपने आप शांत हो गए, कुछ कहने की जरूरत नहीं। आश्रम में आप देखेंगे ये चीज बड़ी अद्भुत है, ये आज तक ये फेनोमेना समझ नहीं आता है। प्लेग्राउंड में मार्च पास्ट होता है, तो टाइमिंग है अगर उसका 6:45, 6:43 तक बातचीत ये वो हो रही है, और 6:45 हुए एक सीटी बजी, सब चुप, हश, साइलेंस, पीस, अपेक्षा, तो उस साइलेंस में सत्य का दर्शन होता है। ये साइलेंस एक इनर साइलेंस है। कास्ट फ्रॉम दी सेंस दैट वेल्स दाई स्पिरिट साइट। सेंस हर समय इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये देखा वो सुना, उसने ये देखा इसने ये कहा, इसी में कितना कुछ हमारा समय, मालूम है उसने क्या कहा, और देखिए लोग अच्छा उसने ऐसा कहा। भगवान की वाणी कहां से सुनाई देगी, ये सब सेंस का जो खेल है उसको शांत करना। in the enormous emptiness of thy mind. Thou shalt see the Eternal's body in the world, know him in every voice heard by thy soul. Emptiness. अब मान लीजिए एक कमरे में आपको भगवान की स्थापना करनी है, तो फिर क्या करते हैं? पहले उसमें से अनावश्यक चीजें हटा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? जो कुछ आवश्यक है उसको व्यवस्थित करते हैं, फिर भगवान के आने के लिए आप ऑल्टर बनाते हैं, फिर भगवान आते हैं। यही तो सिंबल है, कैंप ऑफ गॉड बनाने का तरीका यही तो है। तो अगर अपने अंदर कैंप ऑफ गॉड बनाना है तो यही प्रोसेस है। एम्प्टीनेस, वे सब चीजें जिनसे हमने भर रखा है अपने जीवन को, उसको श्री अरविंद यूज करते हैं रिजेक्शन। और जब तक वो नहीं आएगा तब तक कैसे अंदर में भगवान की स्थापना होगी? यही चीज करेंगे ना हम लोग मेडिटेशन हॉल के लिए, उसको भर के तो नहीं रखेंगे चीजों से, उसको साफ करेंगे। नो हिम इन एवरी वॉइस हर्ड बाय thy सोल, इन द वर्ल्ड्स contacts मीट his सिंगल टच, ऑल थिंग्स shall फोल्ड thee into his embrace। हर किसी में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, हर कोई जो आएगा मिलेगा कॉन्टेक्ट होगा, उस सब के अंदर भगवान का दर्शन होगा। एक स्टोरी है रमन महर्षि की कि सब बैठे हुए थे, अचानक एक कोबरा गिर पड़ा ऊपर से, सब लोग हा करके, रमन महर्षि वैसे ही बैठे रहे, वो अपना निकल के चला गया। तो कहा आपको डर नहीं लगा? कहते वो कौन है? वही तो है, वही तो है। माता जी श्री अरविंद के जीवन में ऐसी कितनी कहानियां, माता जी आने के पहले, कल सांप की कहानी हो रही थी ना, कोबरा सामने आके खड़ा हो जाता है, माँ बैठ के ध्यान कर रही है अल्जीरिया में वृक्ष के नीचे, और माँ देख के कोबरा को कह रही है, इसको क्यों क्रोध आ रहा है मेरे ऊपर, जरूर कुछ किया होगा मैंने। तो उनको पता चलता है कि मैं इसकी बामी पर बैठ गई हूं, वो धीरे धीरे उससे सरकती हैं उसकी आंखों में देखते हुए, तो उसको आश्वासन मिलता है और चुपचाप मुंडी नीचे करके वापस चला जाता है समुद्र में नहाने के लिए, नदी में। कॉन्कर दाई हार्ट थ्रॉब्स, लेट दाई हार्ट बीट इन गॉड। हमारा दिल किस किस चीज के लिए धड़कता है उसको भगवान के अंदर हृदय को धड़कने दे, उनसे प्यार करें। Thy nature shall be the engine of his works. Thy voice shall house the mightiness of his word. Then shall thou harbor my force and conquer death. रोज दिखाते ना युद्ध वाले सीरियल्स में कि वो युद्ध के बाद आदमी आके क्या करता है, अपने पहले अस्त्र शस्त्र एक जगह पर रखता है, फिर अपने कवच वच खोल के वस्त्र इत्यादि एक जगह रखता है, शयन कक्ष में जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, रोज सोने के पहले हमारे क्या अस्त्र शस्त्र है, ये सारा शरीर एक यंत्र है, तो उसको माता जी के सामने रख देना चाहिए, उसके बाद हमारे वस्त्र इत्यादि वो सारी चीजें जो हमें घेरे रहती हैं इनर बीइंग, उसको माता जी के चरणों में उसको भी रख देना चाहिए, फिर अपनी आत्म तत्व को साइकिक बीइंग को जो हम हैं माता जी के हृदय में डाल देना चाहिए, फिर सो जाना चाहिए। वेरी सिंपल। जब उठेंगे तो ये सब उनसे वापस लेना चाहिए, फिर से वो उस यंत्र का उपयोग होगा सब चीजों का, फिर रात को रोज ये प्रक्रिया करें। कितनी सुंदर प्रक्रिया है, किसी दिन नहीं उठे तो नहीं उठे, यंत्र भी उनके पास है, आत्मा भी उनके पास है, कितनी सुंदर बात है। कुछ लोगों को इसका भय हो जाता है, अरे हम नींद में कहीं चले ना जाए, अरे कोई बात नहीं है, नहीं उठे चले गए, सब उनके गोदी में है। देन शेल्ट दाउ हार्बर माई फोर्स एंड कॉन्कर डेथ। ये जो पथ है ये हम लोगों का पथ है, सूर्यालोकित पथ। और तब माँ इस योग को करती हैं और जो जो अनुभव होते हैं, चैत्य को की प्राप्ति, सारे सेंटर्स का खुलना, और उसके लास्ट में वो लाइन पढ़ के हम लोग रुकेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। क्योंकि कैंप ऑफ गॉड वी मस्ट रीड. बहुत लंबा है ये कैंटो और नेचुरली कैसे हमारा हमारे विचार भावनाएं सब रूपांतरित होती हैं और अंत में ये पहला परफेक्शन. तीन परफेक्शन है, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल और सुपरमेंटल. ये साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है. इन द स्लो प्रोसेस ऑफ द इवॉल्विंग स्पिरिट इन द ब्रीफ स्टेट बिटवीन ए डेथ एंड बर्थ ए फर्स्ट परफेक्शन स्टेज इज रीच्ड एट लास्ट. जब चैत्य उद्घाटित हो जाता है और चैत्य के प्रभाव से सारी जो चक्र हैं ये खुल जाते हैं और सब कुछ प्रकाशोन्मुख हो जाता है. फर्स्ट परफेक्शन. आउट ऑफ द वुड एंड स्टोन ऑफ अ नेचर स्टफ ए टेम्पल इज शेप्ड वेयर द हाई गॉड्स कुड लिव. ये देह यष्टि फिर एक मंदिर बन जाती है और उसके अंदर उच्च देवता विराजमान हो जाते हैं. इवन इफ द स्ट्रगलिंग वर्ल्ड इज लेफ्ट आउटसाइड वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड. यदि हम इतना भी कर लें तो संसार की को पूर्णता की ओर जाने में सहायक होंगे. देर इज वन ए न्यू प्रॉक्सिमिटी टू द स्काईज ए फर्स्ट बिट्रोथल ऑफ द अर्थ टू हेवन ए डीप कनकॉर्डेड बिटवीन ट्रूथ एंड लाइफ ए कैंप ऑफ गॉड इज पिच्ड इन ह्यूमन टाइम. ये पहली इसी को कहते हैं मां की विक्ट्री. और जो केंद्र बनाया जाता है या लोग केंद्र में काम करते हैं आश्रम जाते हैं उसका अर्थ ये रहता है कि उसके द्वारा हम उस चीज को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारें. जैसे आश्रम का परिसर साफ रखते हैं हम अपने अंदर स्वच्छ विचार भगवत उन्मुख विचार वैसी भावनाएं लाएं एम्प्टीनेस लाएं जैसे उसके अंदर है ताकि सर्वत्र हर कोने में केवल माँ का नाम गूंजे और उनको स्थापित करें. दैट इज द सनलिट पाथ. बहुत सिंपल है योग पथ. कठिन कब लगता है जब लाइफ डिवाइन पढ़ते हैं. लाइफ डिवाइन योग पथ पे चलने के लिए नहीं लिखी थी श्री अरविंद ने, उनके लिए लिखी थी. तो जो ज्यादा जिनको इंटेलेक्चुअल होने का वो है जैसे बर्ट्रेंड रसेल उनके लिए लिखी है. हम लोगों के लिए प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस. और सावित्री देखिए कितनी सरल है, पढ़ते पढ़ते अपने आप वो अंदर से उद्घाटित करती है अपने सत्य को. हिंदी के थ्रू मत पढ़िए. हिंदी जो है वो बड़ी एक तो क्लिष्ट है और जो डायरेक्ट टच है वो मिस हो जाता है. खासकर जो हिंदी अनुवाद है, थोड़ा बहुत विद्यावती कोकिल जी ने जो पद्य अनुवाद प्रयास किया है लेकिन वो तो थोड़ा बहुत किया है. आई डोंट थिंक सारी सावित्री. जो दूसरा अनुवाद है वो और क्लिष्ट है और वो तो केवल बस लाइन को एक ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में. तो उसमें ना पढ़ने में आनंद है ना वो शाब्दिक अर्थ. तो और शाब्दिक अर्थ और कठिन. इनकॉन्शियंट निश्चेतना दोनों ही शब्द तो कठिन है. इतनी इंग्लिश आती है और नहीं आती तो इंग्लिश सीख ले सावित्री पढ़ने के लिए. और वो भी नहीं कर सकते तो सावित्री पढ़ने से इंग्लिश आ जाएगी. तीन ऑप्शन. या तो हम लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है पढ़ें बाकी काम. नहीं आती तो सीख लें सावित्री पढ़ने के लिए. और ये दोनों भी नहीं कर सकते तो सावित्री पढ़ें इंग्लिश अपने आप आ जाएगी. ये मैं गारंटी बताता हूं, ये फैक्ट है. इंग्लिश आ जाएगी, इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी. माताजी ने कहा है ये बात. वह सब कुछ अंदर में विकसित होगा क्योंकि ये तो मंत्रविद बीज हैं, वर्ड्स ऑफ लाइट. जहां से मन करे वहां से पढ़े. भगवान को नियमों में नहीं बांधना चाहिए. सुबह उठ के प्रातः पढ़ें या स्नान करके पढ़ें, दो लाइन पढ़ें, पांच लाइन पढ़ें, दस लाइन पढ़ें, एक पेज पढ़ें, एक कैंटो पढ़ें. जो पढ़ें आनंद से पढ़ें. जितना पढ़ें, एक लाइन आधो में पुनियाद, उसका भी फायदा है। और कभी कभी कुछ लोग कुछ लाइन बहुत स्ट्राइक करती है तो उसको लिखते भी हैं। आप देखेंगे पढ़ते जा रहे कुछ पंक्तियां अचानक स्ट्राइक करेंगी। समझने की चेष्टा मत करिए कौन बोल रहा है क्यों बोल रहा है, कोई बात नहीं है। नहीं भी समझ आ रहा कोई बात नहीं है। सावित्री कहानी किसकी है? हमारी कहानी है। हमारी कहानी, सृष्टि की कहानी, भगवान की जुबानी। और क्या है? प्रारंभ कहां से हो रही है? महाअंधकार से, निश्चेतना से सब कुछ प्रारंभ होता है। एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स। समाप्त कहां हो रही है? मृत्यु के विजय पर। मार्ग में एक पड़ाव है महत्वपूर्ण जो हमें पार करना है। वो पड़ाव क्या है? ए कैंप ऑफ गॉड पिच्ड इन ह्यूमन टाइम। कम से कम इतना हो कि ये देह एसटी भगवान की मंदिर बन जाए। फर्स्ट परफेक्शन, बाकी वो करेंगे, ये भी वही करेंगे, लेकिन इसमें हमारा एक योगदान हो सकता है, सहयोग। तो हम लोग यहां रुकेंगे और प्रश्न है तो वी विल टेक दैट क्वेश्चन आंसर। नहीं नहीं कोई संकोच नहीं होता। तो क्या है?
हाँ, आपने कल गीता पर जो कहा था, तो गीता का ऐसा उपनिषद है जो द्वापर के कगार पर भगवान ने कहा है, वो ऐसा संदेश दिया है, ये मालूम पड़ता है कि वो कलयुग के लिए। इसमें गीता एक छोटी सी उपनिषद है, बाकी देश के उपनिषदों में और सबसे छोटा है, उसमें 700 श्लोक है और उसमें भगवान ने 2-3 श्लोक बार बार दो दो बार कहे। इसमें एक श्लोक है, श्रेयान स्वधर्मे विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठिता, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ये दो बार आया है। अब आज अपन देख रहे हैं कि लोग जो हैं, जो भी कुछ उनका धर्म है जैसा भी है, वो उसमें रहने के लिए नहीं, धर्म परिवर्तन होने के लिए जा रहे हैं। और जितने भी उनके धर्म के धर्मावलंबी, धर्म के जो पेगोड़ा लोग हैं, वो उनको रोक नहीं रहे हैं कि भाई तुम इसी में रहो, इसी में ईश्वर है, इसी में अल्लाह है, इसी में साईं है, इसी में खुदा है। परंतु ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब गीता अपने लिए दी है, अपन जो लोग हैं उसके खास, वो उसको प्रेरित क्यों नहीं कर रहे हैं?
इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो कली वर्ज, जैसे आपने बताया गीता दी गई थी द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में, तो अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं और उस युग में वह सब कुछ जो अब तक हमारे मापदंड रहे हैं, जिसको हमने धर्म समझा है, वह सब कुछ टूटेगा और सब जगह टूटेगा। हमें ऐसा लग रहा है कि लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। वास्तव में परिवर्तन धर्म किसका होता है? मैं ये मानता हूं जिसका धर्म होता ही नहीं है। नाम से जो करता है कि हाँ हम नाम से हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, वह धर्म नहीं है। धर्म तो तब है जब हम उसका अनुसरण करते हैं, उसके बारे में हमारी जिज्ञासा होती है। जो जन्म से एक धर्म हमको मिलता है, वो एक संभावना होती है हमारे लिए। किंतु जैसे हम बाकी सबका चुनाव करते हैं, करियर का चुनाव करते हैं, हस्बैंड वाइफ सबका चुनाव करते हैं, एक समय आता है जब हमें धर्म भी चुनना चाहिए। धर्म से मेरा मतलब किसी रिलीजन से नहीं है, रिलीजन तो एक बहुत छोटी चीज है। हमें चुनाव करना चाहिए कि हम ईश्वर की ओर किस पथ से जाएंगे। हमें यह सिखाया नहीं जाता, इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं होती। जो आपने कहा ना क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पूरी आप देखिए स्कूल के करिकुलम में सब सिखाया जाता है, किंतु सत्य की प्राप्ति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जिसके बिना जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसका हम सही मूल्यांकन नहीं कर सकते, ये नहीं सिखाया जाता है। क्यों नहीं सिखाया जाता है, उसमें किसका दोष है, वो एक और बात है। अगर हम हिंदू समाज को लें तो हिंदू समाज में भी यही त्रासदी है। हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं? गीता पढ़ते हैं, निष्काम कर्म की बात होती है, लेकिन बच्चों को पूरे जीवन कामनाओं में बांधते हैं। हमारी कामना को पूरा करेगा बड़ा होके, ये बनेगा वो बनेगा। स्वधर्म तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में तो समझते भी नहीं, बताना तो वो क्या है। तो फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, सारे समय हम उनको हिरण्यकश्यप की गॉस्पेल सिखाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं जहां किताबें भी उसी प्रकार की हैं, लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट इत्यादि की लिखी हुई किताबें हैं या वेस्टर्न सेकुलर किताबें हैं, जिसके अंदर भारतवर्ष के सनातन धर्म का मूल्यांकन ही नहीं है बल्कि विरोध है और स्पष्ट है, लेकिन इतना अलस तमस है कि हम चलने देते हैं, वो एक चलने दो, एक वो टेंडेंसी आ गई है मन के अंदर कि चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो नेचुरल है, वो एक समय आता है जब बच्चा या तो मैकेनिकली जो उसको विरासत में मिला है उसमें चलता रहता है, उसको खुद भी नहीं मालूम, और वो नेचुरली उसमें चलता रहता है। तो जैसे जेरोक्स करते हैं तो हर जेरोक्स के बाद वो जो प्रतिलिपि भी है ना, वो उसकी स्याही कम होने लगती है। तो प्रारंभ कहाँ से होगा? एक ऐसे योगनिष्ठ पुरखे से होगा जिन्होंने सिर्फ गीता पढ़ी नहीं थी, जीवन में उतारी थी। अक्सर देखेंगे लोग बोलेंगे हमारे दादाजी दादाजी, अरे वो तो फिर दूसरे जन्म में थोड़ा बहुत गीता पाठ कर रहे हैं लोग, तीसरे जन्म में हाँ हाँ गीता है एक अच्छी पुस्तक है थोड़ा इंटरेस्ट ले लिया, चौथे जन्म में हाँ है गीता हमारे पूर्वजों ने पढ़ी थी, पांचवें जन्म में गीता है बाइबिल है कुरान है सब है, मालूम नहीं क्या है क्या लिखा है, हमारा धर्म तो एक ही है पैसा कमाना तो वो धर्म तो था ही नहीं। तो जब ये हो जाता है पैसा कमाना, तो फिर कोई कहता है देखो तुम अपना सरनेम चेंज कर लो, जॉन और जैक बन जाओ, जय किशन की जगह जैक्सन बन जाओ, तुम्हें अमेरिका में अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, जय किशन गांव वालों के लिए रहेंगे, वहां के लिए जैक्सन बन जाएंगे, हरी से हरी बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और ये शुरू हो जाती है कहानी। फिर उनके बच्चे बच्चे तो पता नहीं कहां, वो फिर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये वास्तव में धर्म है ही नहीं, इस तरह की चीजें तो टूट ही जानी चाहिए और टूट रही हैं। वो वास्तव में कोई किसी धर्म का नहीं होता, जो धर्म परिवर्तन होता है वो वास्तव में किसी धर्म का नहीं होता, वो धर्म जानता ही नहीं। लेकिन जो आपकी बात है बहुत सही है कि जो लोग सच्चे ढंग से जानते हैं और अभ्यास कर रहे हैं, ये उनका कर्तव्य है कि मार्गदर्शन करें और सिखाएं कि जीवन में एक महत सत्य है, उसकी ओर जाने के अनेकों रास्ते हैं। फिर बच्चे को छोड़े फ्री कि तुम चुनाव करो, चुनाव तो बच्चे को ही करना है, जब 21-22 का होगा तो चुनाव करेगा, चुनाव करके वो जिधर जाना चाहे ये उसकी स्वेच्छा है, पर उसके पास डेटा ही नहीं है, चुनाव किस बेसिस पर करेगा। बाजार गया वो लाने के लिए, कहते ना इंस्ट्रूमेंट कोई चीज, टेप रिकॉर्डर या रिकॉर्ड प्लेयर लाने गया, उसको मालूम ही नहीं है कौन सी फोन लाने गया, मोबाइल कंपनी मालूम नहीं है कौन सा मोबाइल कौन सा अच्छा है क्या ऐप है, उठाया बोला कौन सा मिल रहा है ये ले जाओ ये 2500 में है, बात हो सकेगी? हो सकेगी, उसको इतना ही पता है मोबाइल की उपयोगिता। वैसे ही हमें धर्म की उपयोगिता इतनी पता है कि भाई ये पुण्य कमा रहे हैं, जैसे मोबाइल की उपयोगिता लोग ऐसा समझते ना केवल वो फोन पे बात करने के लिए, लोग नहीं जानते कि वो मोबाइल इज ए मिनी कंप्यूटर, पूरे संसार से वो आपके विंडो बन सकता है। हाँ, जो जानते हैं वो फिर पूरी जानकारी करके जाएंगे कि अच्छा कौन सी कंपनी का मोबाइल कौन सा अच्छा है, सब जानकारी करके फिर उसको लेंगे। तो उसी प्रकार से एक धर्म वो होता है जो हम इस तरह से अपनाते हैं कि इसका क्या थोड़ा पुण्य हो जाए, तो वो एक दकियानुसी परंपरा में अब पुण्य होता है नहीं होता ये दूसरी समस्या है, लेकिन उस तरह से हम धर्म अपनाते हैं कि चलो थोड़ा पुण्य कार्य कर लो। लेकिन एक धर्म होता है जब हम धर्म की महत्ता को जानते हैं, और ये सिखाना चाहिए बच्चों को स्कूल में कि धर्म क्या है। धर्म किसी पुस्तक को पढ़ना और इसका ये नाम नहीं है, किसी एक भगवान को पूजना ये नाम नहीं है। जब श्री कृष्ण, क्या अद्भुत दर्शन है, मैं तो बोलता हूं लोगों को श्री कृष्ण सर्वव्यापी भगवान क्या है, केवल उस भाग को ले लें। एक आर्टिकल लिखा था मैंने बहुत पहले, गॉड इन द बैटल फील्ड एंड द लॉर्ड ऑफ द गीता, कैसे भगवान है देखिए, वो तो मुक्त कर देते हैं सब चीजों से हमें, कैसे पूजा करो, कहते पत्रम पुष्पम फलम तोया, इससे अधिक व्यापक पूजा और इससे अधिक व्यापक भगवान कहां मिल सकते हैं। तो उस ढंग से हम प्रस्तुत नहीं करते, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं 100% आपसे सहमत हूं कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो नहीं जानते वो तो अज्ञान में है, और जो जानते हैं वे नहीं सिखाते। ये अब अगर वो सिखाना चाहें तो कैसे सिखाएं, ये एक तीसरी बात है कि उसको मैकेनिकली नहीं सिखाया जा सकता कि भाई देखो रोज सुबह उठ के गीता के 2 श्लोक पढ़ लो। इट इज नॉट लाइक दैट। बैठ करके उसको जीवन से जोड़ करके कि उस ना केवल अब उसे क्या प्रेरणा मिलती है, वो क्या है गीता फॉर द यूथ, अब ऐसी चीजें आ रही हैं, प्रयास हो रहे हैं। पांडिचेरी में ये प्रयास बहुत अधिक हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, कैसे हम आध्यात्मिक सत्य को, भारत की निधि को सामयिक बनाकर प्रस्तुत करें। अब गीता देखिए कितना सुंदर, एक ही आधे क्वार्टर श्लोक को ले लीजिए, योगः कर्मसु कौशलम्, कितने डोर्स खोल देता है। एक क्रिकेटर था, नाम नहीं लूंगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंडिया के लिए खेला, तो वो एक बार आकर के मेरे से पूछ रहा था, बोलता है मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ जब खेलने के लिए जाता हूँ, तो ये होगा वो होगा। तो पूरी गीता की जो शिक्षा है उसको मैंने नटशेल में दी, और उसने अभ्यास किया और मुक्त हुआ, अच्छा क्रिकेट खेलने लगा। तो अब देखिए ये अप्लाई करने वाली चीज है, गीता तो बहुत ही प्रैक्टिकल स्क्रिप्चर है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत बार हम लोग नर्वस हो जाते हैं केवल निष्काम वो काम सकाम के कारण, हमारा आधा ध्यान केवल रिजल्ट पर होता है, तो परफॉर्मेंस तो कम जाएगा ही जाएगा, ऊर्जा तो वही है, वो ऊर्जा कहाँ चली गई, रिजल्ट पे चली गई। अब अगर रिजल्ट पे नहीं छोड़कर उस मोमेंट पे कंसंट्रेट करें, गीता से तो अनेकों अनेक, जो आपने बताया छोटा सा स्क्रिप्चर 700 श्लोक, लेकिन उस 700 श्लोक में उसमें ब्रह्मांड समा जाए कम पड़ जाए। गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है कि वो 700 श्लोक 7 सहस्र श्लोक बन सकते हैं, लेकिन ये कार्य हम सबको मिलकर करना है, बहुत आवश्यक है। स्कूलों में उसको सही ढंग से लोग गिने चुने हैं, समस्या ये होती है, कुछ लोग कर रहे हैं, कई लोग मैं जानता हूं खासकर जो श्री अरविंद आश्रम से प्रेरित हैं वो कर रहे हैं कई स्कूलों में। और श्री अरविंद ऐसा कहते थे कि शिक्षा सबसे उत्तम माध्यम है, शिक्षा और स्कूल धरती पर इस सनातन सत्य को प्रकट करने का। और सब जगह मैं यही बात कहता हूं, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आप अपने केंद्र को केवल मेडिटेशन सेंटर मत रहने दो, क्योंकि उसमें फिर वही होगा, कुछ लोग आके मेडिटेशन कर रहे हैं और वो दूसरे मोक्षवादी धारा शुरू हो जाएगी। एक स्कूल साथ में जरूर जोड़ो, आज नहीं तो कल, एक ब्लूप्रिंट, एक लॉन्ग टर्म प्लान रखो। तो स्कूल जब जुड़ता है तो एक नई पीढ़ी के साथ जो काम होता है नई चेतना का, संभव बहुत अद्भुत है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। प्रेरणा आएगी तो होगा। आज जो बता रही थी दीदी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनका बेटा खोलना चाह रहा है एक स्कूल, बहुत अद्भुत बात है। कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, ये करने योग्य कार्य है। और वो प्रोपेगेंडा के माध्यम से नहीं, हम लोग को ये नहीं कि वो जैसे वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग करते हैं, बाइबिल बांट दी, गीता बांट दी, नहीं वैसा, वो धर्मांतरण नहीं, वो सब नहीं। लेकिन बचपन में बच्चे जाने की एक ऐसा सत्य भी है, एक ऐसा काम भी है जो मुझे बड़े होकर करना है, केवल मुझे जॉब नहीं करना है, और उसके लिए वो इक्विप्ड हों, एम्पावर्ड हों, तब वो चुनाव करेंगे, सही चुनाव करेंगे। और कोई प्रश्न? हाँ, वो मैंने टच किया वैसे, और उसको अगर हम संक्षेप में वो थोड़ा विस्तार से करें तो सबसे उत्तम ध्यान तो वो है जो सहज रूप में लग जाए। सहज रूप में कब लगता है? जब हम भगवान को भगवान के लिए प्यार करते हैं, तब नेचुरली वो प्रिय है। तो आते जाते आपका ध्यान कोई एक पार्ट तो कनेक्टेड रहता है, दूसरा जब जब मौका मिलता है आप सोचते हैं, ये सबसे उत्तम है। और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों का संग जो भगवान को प्रेम करते हैं, और ऐसे लोगों का क्या कहेंगे, छोड़ना, विसंग, त्याग, जो ईश्वर विरोधी हैं, ये किसी धर्म की बात नहीं है, गीता भी ये बात करती है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, दुसंग से दूर। एक गुरु नानक की हुए ना, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की, तासे आनिश भागो। विष का काम करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर। वो वासुदेवम सर्वमिति आएगा, लेकिन पहला स्टेप ये है, क्योंकि वो फिर मन को उलझाएंगे। उनका काम और कुछ नहीं है, बस संसारी चीजों को संसारी रूप में देखना, तो उनसे दूर रहना। इसीलिए गीता कहती है कि जो अध्यात्म के रास्ते पर जाता है उसको थोड़ा एकांत प्रिय होना चाहिए। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, रोज शादी ब्याह, इस सब में इन्वॉल्व जितना कम करे। पांडिचेरी में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं बेटे को, तू शादी वादी सब अपना तैयार कर ले, मैं तेरे पास एन वक्त पे आ जाऊंगा तुझे आशीर्वाद देने के लिए। एंड दे हैव डन लाइक दैट। बच्चे तो आजकल बड़े अच्छे हैं, फ्री हैं, तो खुद कहते हैं मम्मी पापा जितना कम इन्वॉल्व हो आप अच्छा है, हम ही चुन लेंगे, लड़की लड़का सब कर लेंगे, शादी की भी जरूरत नहीं है, साथ रह लेंगे तो और भी अच्छा, कोई समस्या नहीं। आप आशीर्वाद जरूर देना, आशीर्वाद जरूर देना चाहिए। और एक एक सिंपल चीज कि आप भगवान साक्षी हैं, यही तो है ना सेरेमनी। लेकिन हम लोग कितना देखिए इन सब चीजों पे, धन ये वो खर्चा, और ऐसे लोगों की बात हर साल 2 महीने इन्हीं चीजों में चले जाते हैं लोगों के। हाँ, तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना है, ऐसे स्थानों से दूर रहना है, ऐसे सिनेमा से दूर रहना है जो हमारे अंदर विष घोल रहे हैं। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा भगवान का कार्य होगा, वो दिन को तो भगवान 4 ईंट डालेंगे, रात को वो तोड़ दी जाएगी। जैसे वो ग्रीक स्टोरी है ना ओडिसियस, उसमें पेनेलोप ओडिसियस की पत्नी करती है। ओडिसियस गया हुआ है युद्ध के लिए, फेमस सीज ऑफ ट्रॉय के युद्ध के लिए, और पेनेलोप बहुत सुंदर भी है, कुशल भी है। तो सारे लोग कहते हैं वो 10 साल से युद्ध लड़ रहा है, मरवर गया होगा, तब मोबाइल वाइल था नहीं, मेरे से शादी करो, मेरे से शादी करो। वो क्या करे, किसको मना करे उस समय का। तो कहती हाँ मैं शादी कर लूंगी, मैं कुछ बुन रही हूं, जब ये कंप्लीट होगा तो शादी कर लूंगी। अब वो क्या करती थी, दिन में बुनती थी, रात को उधेड़ देती थी खुद ही करके खुद उधेड़ देती तो जब मुझे लगता है हम लोग भी यही करते हैं दिन को बुनते हैं, रात को उधेड़ देते हैं। पर प्रतीक्षा करती है, आते हैं ओडिसियस बाद में, बड़ी सुंदर स्टोरी है। 3 साल का बच्चा होता है जो बाद में 12 साल का होता है, ओडिसियस का बच्चा होता है टेलीमेचस, तो वो ढूंढने निकलता है, कहता है कि कब तक आप करते रहोगे, मैं जाऊंगा अपने पिता को ढूंढने। तो कहते तू पहचानेगा कैसे, नहीं मैं पहचान लूंगा। और जाता है, ढूंढता है, कहता है ये सब हो रहा है घर में। तो पिता कहते कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं, मेरे अस्त्र शस्त्र बस जरा ठीक से रख दो, ये लोग तो बस इसी चक्कर में, इनका तो सब तेज लुप्त हो गया है, मैं तो युद्ध लड़के आ रहा हूं। बड़ी अद्भुत स्टोरी है, श्री अरविंद ने इसको बहुत ही उच्च स्थान दिया है। पर मुख्य चीज ये है कि ध्यान के लिए हमें ये अभ्यास, फिर रोज थोड़ी देर बैठ करके अभ्यास, प्रयास, हर चीज में प्रयास अभ्यास। कालिदास जैसे व्यक्ति जो निरक्षर भट्टाचार्य क्या कहते हैं, कैसे उनको ये बात आई कि हो सकता है। रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान, रस्सी के आने जाने सिल पर निशान पड़ जाता है, बूंद गिरने से चट्टान भी पिघलने लगती है। तो यदि बूंद और रस्सी से ही हो सकता है तो हमारी ये चट्टान क्यों नहीं पिघलेगी। रोज हमको इसको कॉन्टैक्ट में लाना है डिवाइन के। कैसे कॉन्टैक्ट में लाएंगे, इसीलिए मंदिर इत्यादि ऐसे स्थान बनाए जाते हैं, या अपने घर में ऐसा कक्ष बनाया जाता है जिसमें और कुछ नहीं हो, केवल भगवान की ऊर्जा हो, वहां जाके और कोई डिस्कशन नहीं। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये केंद्र में ऐसा ये वैसा का वैसा रहे, बहुत सुंदर है। इसमें कोई बातचीत ये वो नहीं चलना चाहिए, लिख दीजिए उसमें सब जगह, क्यों ये ऊर्जा संग्रहित रहेगी। तो हम लोग जब आएंगे तो ये चट्टान स्पर्श पड़ेगा किसका, ना रस्सी ना पानी, सीधा प्रकाश का, तो पिघलेगी। तो पहले शुरू में अभ्यास करने के लिए ऐसे किसी स्थान का चुनाव करना चाहिए। रोज आके बैठ गया आदमी 15 मिनट 20 मिनट, नहीं लगा ध्यान, कोई बात नहीं, आप बैठिए और वो ऊर्जा काम करेगी, काम करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 महीने 3 महीने देखेंगे कि अरे अब ये चीज मेरे लिए सरल हो रही है, थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहे हैं। फिर किसी नाम का सहारा, इमेज का सहारा, माँ के स्वरूप का अंदर में ध्यान, या नाम का स्मरण या मंत्र का स्मरण, ये अपने अपने प्रकृति के अनुसार, इसमें कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। किस रूप में व्यक्ति अंदर भगवान को, इष्ट को ध्यान करेगा, ये उसकी इच्छा, कौन सा मंत्र उसके अंदर सहज रूप में प्रकट होता है और भगवान से जोड़ता है, ये उसके ऊपर है। कुछ मंत्र यूनिवर्सल होते हैं, जैसे ओम या माँ, ये यूनिवर्सल है, गैया भी करेगी तो उसका प्रभाव होगा, मनुष्य तो मनुष्य है, माँ 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 माँ, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, यूनिवर्सल मंत्र है, चार्ज हो गए हैं माँ से। कुछ मंत्र होते हैं जिनको माताजी हमारे अंदर प्रकट करती है, सावित्री की एक पंक्ति हो सकती है, All can be done if the God touch is there. या कोई और मंत्र हो सकता है विशेष, वो अंदर प्रकट होगा तो वो आपका अपना मंत्र हो गया, तो उसको करना चाहिए। नाम जप तो अपने आप सतत स्मरण, नाम जप इत्यादि से अंदर वो द्वार खुलेगा ही खुलेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, समय लग सकता है, कितना हमारा बैगेज है उस पर डिपेंड करता है। अगर बैगेज बहुत ज्यादा है, चट्टान ज्यादा कठोर है, तो समय लगता है, और अगर कम है बैगेज तो जल्दी खुल जाएगा। ये ध्यान की विधि है, बाकी चीजें उसके बाहरी अवलंब है कि कैसा स्थान हो। नेचुरली बहुत अनकंफर्टेबल बैठे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं, तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बहुत टाई बहुत मोटा भी ना हो, इतना कंफर्टेबल कि आप सो ही जाएं, और इतना हार्ड भी ना हो कि बस उसी पर ध्यान रहे, तो ये सब चीजें, बहुत पेट भी ना भरा हो कि पता चले कि पूरी ऊर्जा यहां पर आ रही है, और ऐसा भी ना हो कि फिर से आ रही है कि भूख कब शास्त्री जी खाना बनाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा समय ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं होता। फिर कुछ ऐसे अवसर होते हैं समय जब पूरी सृष्टि में ध्यान लग रहा होता है। एक हमारे यहां कहा जाता है, देखिए स्टोरीज कितनी इंटरेस्टिंग है, कि शाम को संध्या के समय 6 बजे के आसपास जब गोधूली की वेला होती है उसको शुभ माना गया है, मतलब वो एक सेक्रेड ब्राह्मण लोगों के लिए था कि संध्या वंदन करना आवश्यक है उस समय, और ये कहा जाता था बाकी सबके लिए इस समय शिवजी सारी सृष्टि का चक्कर लगाते हैं, उस समय कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। देखिए रावण का जो पैदा होता है उसी समय ये कर्म होता है, कहते हो ऋषि, उनके पिता ऋषि हैं, कहते हैं उसकी माँ को ये समय उपयुक्त नहीं है, पर जो भी है भाव, उस समय कोई ऐसा कर्म ना करें। क्यों? सारी सृष्टि में शिव चक्कर लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? स्टिलनेस होती है, सब कुछ अपने आप शांत होता है, तो उस शांति का लाभ हम उठा सकते हैं, जैसे स्थान का लाभ उठा सकते हैं वैसे भी हम काल का लाभ उठा सकते हैं। उस समय चुपचाप बैठ जाना चाहिए, जहां भी है, आप ऑफिस में हैं थोड़ा चुप बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, लोग आपको पागल समझ सकते हैं, सोच सकते हैं सटका हुआ है, लोगों की दृष्टि में पागल होना कहीं बेहतर है, उनकी दृष्टि में अगर समझदार हुए तो मतलब हम बहुत फालतू आदमी हैं, भगवान की दृष्टि में बड़ा समझदार है, माने दुनियादारी से भरा हुआ है। और जब लोग कहते हैं पागल है, पता नहीं क्या करता है, चुप हो जाता है, बात नहीं करता किसी से ठीक से, तो इसका मतलब है भगवान के करीब जा रहे हैं, और फिर लोग थोड़े समय बाद आपको तंग करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं पागल ही है ना, छोड़ ही देते हैं, तो ऐसा पागल होना बहुत अच्छा है, तो उस समय थोड़ा सा चुप हो जाइए, कौन क्या सोचेगा क्या समझेगा। नेचुरली अगर पति पत्नी में समझ नहीं है तब समस्या है, क्योंकि पत्नी आपको बार बार, या पति चुप क्यों हो, गुस्सा हो, नाराज हो, और बेचारी को अल्टीमेटली कहना ही पड़ता है, नहीं मैं ध्यान कर रही हूं, ध्यान सुबह करना, अभी चाय बना दो, सब कितनी बड़ी समस्याएं हैं। ये एक अच्छा पति, और अगर खराब होगा तो फिर तो छोड़ ही दो, तुम्हें और कोई काम नहीं है। ये क्या होता है, अपने काम करो, कर्तव्य गीता में लिखा है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता पति की सेवा करना। ये तो एक दूसरी समस्या है। लेकिन ऐसे समय चुप रहिए। फिर एनर्जी का संग्रह होना। ध्यान का अर्थ क्या है, आप अपनी चेतना को एकाग्र एकजुट करके दरवाजे पर धक्का मारते हैं। आपने देखा होगा ना किले के दरवाजे पहले कैसे लोग तोड़ते थे, इकट्ठा करके लकड़ियां सब मिल करके मारते थे। एक छोटी सी लकड़ी में वो ताकत नहीं होती, 10 लकड़ियां आप जोड़ेंगे तो ताकत हो जाएगी। उसी से होता है ना एकाग्र एकत्र, पहले एकत्र तब एकाग्र। एकत्र तभी करेंगे जब होगी, जब लकड़ियां ही नहीं बची। तो ऊर्जा का संवरण, ऊर्जा को अपने अंदर रखना, वेस्ट नहीं करना, यह भी आवश्यक है। अगर सारे दिन हम हा हा ही ही ठट्टा ये वो, ऊर्जा वेस्ट होती रहेगी। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे वेस्ट होती है, मुख के द्वारा। चुप नहीं रह सकता आदमी। बच्चों को क्लास में रिवार्ड देना चाहिए अगर 10 मिनट वो चुप बैठ जाए। बच्चों क्या बड़ों को, अब यहां तो जबरदस्ती बेचारे सब आप लोग बैठे हैं, ऑप्शन नहीं है। 2-3 समय चुप होता है व्यक्ति, एक जब सो रहा हो, एक जब मृत्यु को चला जाए, तो कहते हैं ना शांत हो गए। इसके पहले बड़े अशांत थे, खुद भी शांत हो गए, हमें भी शांत कर दिया, बहुत अशांत कर रहे थे। तो ये वाणी के द्वारा। फिर ऊर्जा कैसे वेस्ट होती है, आप देखेंगे कि स्टीम, आप कुकर होता है ना, तो अगर सीटी ठीक से बंद ना हो तो निकलती जाती है, अंदर में कुछ कुकिंग नहीं होती, जल जाता है। चिंताओं के द्वारा, अगर किसी का विजन हो तो दिमाग में ये सब स्टीम की तरह है, माने कैप ठीक से लगा नहीं है, अंदर में चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ऊर्जा वेस्ट हो रही है। तो फिर क्या करना चाहिए, उसको दिशा देनी चाहिए। दिशा देने का क्या अर्थ है, चिंताएं हो रही है, क्या होगा, ऐसे होगा, उसको भगवान की ओर मोड़ दीजिए और उन चिंताओं को भगवान से जोड़ दीजिए। कम से कम ये तो कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। जितने चिंता युक्त विचार आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, सबको माँ ये विचार तेरा, ये विचार तेरा, माँ संभाल लेना, देख लेना, ये प्रॉब्लम आ सकती, माँ ये भी तेरी, तो आप 10 सेंटेंस में 2 बार तो माँ बोलेंगे अंदर अंदर, माँ से जोड़ेंगे। फिर और किसे हम अपव्यय करते हैं अपने ऊर्जा का, इच्छाओं के द्वारा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्या हुआ, वो ऊर्जा निकल करके साड़ी पर अटक गई। अब आप चले आए लेकिन ऊर्जा कहां अटकी पड़ी है, वहां पर अटकी पड़ी है। और जब आती है तो इसमें अटक जाती कि पैसे कितने लग गए, और अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने, और फट ना जाए, यानी ऊर्जा का, इसको बोलते हैं अपव्यय। तो ऊर्जा का अपव्यय हमें रोकना चाहिए। ये बातचीत लेकिन सबसे बड़ा माध्यम है, इन सब के द्वारा ऊर्जा का अपव्यय होता है। तो जब हम नहीं बहुत ज्यादा बोलते, ये आवश्यक है, वो अच्छी बात है, भगवान की भगवत चर्चा में भी वैसी बातें नहीं जो चीप होती हैं, सुंदर बातें, अच्छी बातें, भगवान की लीला का आनंद, वो तो उपयोग है वाणी का, वरना वो अपव्यय है। दूसरों की निंदा जो सबसे ज्यादा सुख देती है मनुष्य को, ए और बी मिलेंगे सी की निंदा करेंगे, बी और सी मिलेंगे तो ए की निंदा करेंगे, ए और सी मिलेंगे तो बी की निंदा करेंगे, ये सब बंद होना चाहिए। ये सब ध्यान का ही हिस्सा है। ध्यान केवल एक टेक्निक नहीं है, एक जीवन जीने की कला है। और जैसा हम जीवन जीते हैं वैसा ध्यान होता है। और नेचुरली हम सबका जीवन प्रारंभ में इसी तरह का होता है, सबका, कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे कोई आश्रम जाए रहे या जैसे भी, क्योंकि यही चीजें हमें सराउंडेड है। तो इन चीजों से धीरे धीरे हमें दूर होना है और मन को भगवान से जोड़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज जो हमें प्रश्न करना अपने आप से, क्या भगवान सच में हमारे जीवन का लक्ष्य है, और यदि है तो क्यों, माता जी से किसी ने पूछा था, आप योग के बारे में कुछ बताइए, तो माँ प्रश्न का उत्तर प्रश्न से देती हैं, तुम योग क्यों चाहते हो? पावर पाने के लिए, मनुष्य को मदद करने के लिए, योगी कहलाने के लिए? ये सब चीजें अगर हैं तुम्हारे अंदर तो अभी तुम योग में चरण रखने के लिए तैयार नहीं हो। प्रश्न तुम्हें ये करना है अपने आप से कि क्या तुम भगवान को भगवान के लिए चाहते हो? देखिए कितनी सुंदर बात है, भगवान को इसलिए चाहना कि मेरा जीवन ठीक ठाक चले, वो एक है, उसमें ध्यान नहीं हो पाएगा। और भगवान जीवन चलाएंगे लेकिन उतना ही होगा, लेकिन भगवान को भगवान के लिए चाहना, भली बुरी जो राखो प्रभु जी राखो अपने पास, भली बुरी मैं जैसी प्रभु जी राखो अपने पास, जैसी भी हूं मेरे जीवन में जो भी हो रहा हो पर अपने पास जरूर रखना। तो वो फिर ध्यान, तब मीराबाई को देखिए किसी ने ध्यान नहीं सिखाया। आजकल इतने गुरु हो गए हैं, टेक्निक सिखाते हैं, पैसे लेते हैं, जितना बड़ा गुरु उतने ज्यादा पैसे, और मनुष्य को लगता है जितना पैसा दे देगा कोर्स कर लेगा तो ध्यान करने लगेगा। मीराबाई को किसी ने नहीं सिखाया, सूरदास को किसी ने नहीं सिखाया, तुलसीदास को उनकी पत्नी ने सिखाया लेकिन बड़े अद्भुत ढंग से सिखाया। पत्नी के प्रेम मोहपाश में इतने व्याकुल की उफंती नदी को पार करके सांप को रस्सी बना के चढ़ गए, कहती इतना प्यार आसक्ति मुझसे, अरे राम से की होती तो राम मिल जाते, चले गए, बोले राम से ही करता हूं। उसके बाद बड़ी रोई कि हाय मैंने क्या कह दिया। सावित्री में एक लाइन है, कैजुअल पासिंग फ्रेज कैन चेंज योर लाइफ, भगवान बोल दिए उस समय। कभी कभी ये भी होता है। तो जो भी चीज जो अवेक रहता है हर चीज सहायक होती है भगवान की ओर जाने की। मुख्य चीज ये है कि वो हमारा लक्ष्य बन जाए। रिमेंबर वाई द अल्केमिस्ट, सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य तो यही है, बाकी चीजें हैं इस समय नहीं, उन छोटी या जो भी, फिर भगवान छुड़ा देंगे। एक अंतिम वाक्य माँ का फिर हम लोग रुक सकते हैं। माता जी कहती हैं, इफ यू टर्न टू द डिवाइन एंड से आई एम योर्स एंड द डिवाइन सेज यस, द होल वर्ल्ड कैनॉट कीप यू अवे एंड अपार्ट। हमें क्या करना है, भगवान की ओर मुड़ के कहना है मैं तेरा हूं। फिर एक समय आएगा जब भगवान इस यज्ञ को स्वीकृति दे देंगे और कहेंगे तथा अस्तु, तुझे मैंने स्वीकार किया, और तब कोई चिंता की बात नहीं है। संसार से छुड़ाना उनकी समस्या है, ठीक छुड़ा देंगे। हम लोग यहीं रुकते हैं, अनलेस कोई और प्रश्न है, और यहीं पर सत्र को समाप्त भी करेंगे।
ये सब जो पंक्ति लिखी है, कैंप ऑफ गॉड इज पेस्ट इन ह्यूमन टाइम, ये ह्यूमन टाइम ये यूनिवर्सल लेवल से भी है और अपने इंडिविजुअल के साथ?
हाँ, माने ये बड़ी अद्भुत पंक्ति है कि देवताओं का एक टाइम होता है, टाइम मतलब देशकाल, और एक होता है मनुष्य का। इसमें संकेत है मानवीय भूमि, मानव जीवन के प्रवाह के बीच में भगवान का एक गढ़ बन जाना। यहां टाइम से प्रवाह का एक संकेत है। हाँ, एरा भी, उससे भी ज्यादा काल की गति, अगर इसको हिंदी में कहें तो काल की गति और प्रवाह में एक ऐसा मंदिर बन जाना जो ढह नहीं सकता, उस सेंस में कैंप ऑफ गॉड इज पिस्ट इन ह्यूमन टाइम। मानव चक्र में काल की गति आती है ना, मंदिर बनते हैं, टूट जाते हैं, रियलाइजेशन होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये एक फंडामेंटल परफेक्शन है। एक बार ये बन गया तो काल इसको बहा के नहीं ले जा सकता। यहां टाइम उस सेंस में है, नॉट इन सेंस ऑफ जस्ट एरा, काल गति के प्रवाह में, क्योंकि वो तो बहा ले जाते हैं ना हर चीज को। तो कैंप ऑफ गॉड का क्या अर्थ है वहां पे, काल गति उसको प्रवाहित करके नहीं ले जा सकती, बदल नहीं सकती, नष्ट नहीं कर सकती। आमतौर पर तो ये केवल आत्म तत्व के लिए होता है, नैनम छिद्दंती शस्त्राणी। परंतु जब प्रकृति की गतियां उसके अनुरूप हो जाती हैं, तब उस चीज को काल तोड़ नहीं सकता, बहा के नहीं ले जा सकता, वो सदा सदा के लिए स्थापित हो जाता है। और उस एक व्यक्ति का परफेक्शन फिर हर चीज को रूपांतरित करने लगता है।
जो सामूहिक स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, उसका कुछ विशेष महत्व?
हाँ, क्योंकि सामूहिक स्वाध्याय साधना का क्योंकि हम दोनों दो स्तर पे जीवन जीते हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। और केवल व्यक्तिगत जीवन का बदलना काफी नहीं है, क्योंकि समाज का रूपांतरण, समूह का रूपांतरण अगर नहीं होता तो बात वही होगी, एकांगी साधना करके हर व्यक्ति अपनी अपनी लुटिया पकड़ के जा रहा है। तो समाज का रूपांतरण भी श्री अरविंद के योग का एक लक्ष्य है, कलेक्टिव योगा है ये। तो जब हम समूह में बैठकर स्वाध्याय करते हैं तो एक तो ये होता है कि हम सबकी व्यक्तिगत अभिप्साएं छोटी छोटी मिलकर के मिलती हैं, तो वो अग्नि ज्वाल बन जाती हैं। तो माँ कहती है सबकी इंडिविजुअल एस्पिरेशन थोड़ी थोड़ी होती है, मिलकर के वो अग्नि बन जाती है। और दूसरा, उस अग्नि का फिर प्रभाव भी पड़ता है हम सबके ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, एक दूसरे को हम बल देते हैं। तो इसलिए सामूहिक साधना और विशेषकर कलेक्टिव रीडिंग, और देखिए उसका कई प्रैक्टिकल भी चीज देख लीजिए, ये तो इसका मूल तत्व है। आदमी चुने कि अच्छा मैं रोज पढ़ूंगा, फिर क्या होता है उस टाइम, कोई ना कोई अच्छा बाद में पढ़ लूंगा, अच्छा दिन शाम को पढ़ लूंगा, रात को पढ़ लूंगा, अंत में कहता है अच्छा कल पढ़ लूंगा, या हड़बड़ में पढ़ लिया उसने। जब आप कलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो आप प्रयास करते हैं कि नहीं, 5 से 6 रीडिंग है, मैं जाऊंगा जाऊंगा। और बहुत बड़ी बात है, उड़ीसा का जो पूरा मूवमेंट हुआ, उड़ीसा जाना चाहिए, कभी देखना चाहिए, तो वो बाबा जी महाराज जो इसके केंद्र में यंत्र बने, तो दो ही बातें कहते थे, नाम जप, पाठ चक्र और कुछ नहीं। तो दो बातें वो कहते थे सबको करने को, नाम जप, माँ के नाम का जप कर, और पाठ चक्र, स्टडी सर्किल, वो करते थे लोग। और कैसे, देखिए कल्पना कीजिए कि 10,000 स्टडी सर्किल हैं, उड़ीसा की बात कर रहा हूं, इलिटरेट लोग कहते हैं श्री अरविंद कठिन है, इलिटरेट जगह कई लोग, 500 के करीब केंद्र होंगे, 100 के ऊपर रेलिक सेंटर हैं। आप कहीं पर ऐसे, मेरा तो पहला अनुभव बड़ा आश्चर्य, टॉक देने के लिए गया और कई लोगों का यह अनुभव हुआ है, तो लोग जाते हैं टॉक देने। अब हम जैसे लोगों को उड़िया नहीं आती, अंग्रेजी बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे, गांव के ग्रामीण लोग आके बैठ के सुन रहे हैं। तो आप बाद में पूछेंगे कि ये रियल स्टोरी बता रहा हूं, किसी ने पूछा आपको तो नहीं आती ना भाषा, अरे आप माँ के घर से आए, आश्रम से आए हैं, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं, हम लोग आते हैं इससे मुझे क्या लाभ होगा, सावित्री समझ आएगी कि नहीं समझ आएगी, अरे कौन जाए हम पढ़ लेंगे, ये सब बातें आती है ना, इस चक्कर में नहीं आते हैं, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, या नेट पर अवेलेबल है या यहां है वहां है, वो इसलिए ये सब भेदभाव ही नहीं आता उनके लिए, गोपी के भाव से आते हैं, अरे कृष्ण के यहां से कोई आया है, पत्र लेकर आया है, चाहे पत्र पढ़ना ना आता, सावित्री पढ़ेगा, नहीं आती अंग्रेजी, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, नहीं आती अंग्रेजी, पर वो सावित्री पढ़ रहा है कोई, इसलिए जमा हो जाएंगे 100 लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कौन कहेगा कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या भक्ति है, क्या भक्ति। माता जी ने कहा है कि जब उड़ीसा के लोग आए तब यहां पर भक्ति आई, आश्चर्य होता है। और योगनिष्ठ और ठीक जगह से वो योग पकड़ते हैं, बिना पढ़े मां श्री अरविंद की बहुत ज्यादा पुस्तकें, बस प्यार, बहुत से घरों में आपको मां श्री अरविंद का चित्र दिखाई देगा, आश्रम आएंगे, पैसा नहीं है, मुश्किल से आएंगे, ऐसे शिक्षक हैं अनेकों अनेकों, मैं खुद जानता हूं, जो महीने की पूरी तनख्वाह दे देते हैं केवल इंटीग्रल स्कूल चलाने के लिए. बहुत सारे इंटीग्रल स्कूल है वहां, और उसमें से थोड़ा सा पैसा रखते हैं, लेते हैं वहां से, जैसे प्रॉस्पेरिटी होती ना, जो मेरे जीवन यापन के लिए. मैं एक डॉक्टर महिला को जानता हूं, और अब तो वो रिटायरमेंट की एज पर आ गई होंगी, और कब से जुड़ी हैं, जब मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थी, तब से लेकर आज तक. अब सोचिए एक प्रोफेसर की कितनी तनख्वाह होती है, 1 लाख के ऊपर होती है. वो हर महीने केवल 500 रुपए अपने लिए रखती है, बाकी सब केंद्र के काम के लिए. और वो 500 रुपए, हाँ, केंद्र में खाना पीना सब उनका वहीं, वो लाइक एन आश्रमाइट. ये होती है भक्ति, त्याग, सेवा. श्री अरविंद कहते ना, मैं चोर की तरह 14 आना अपने पास रखता हूं, 2 आना भगवान को देता हूं. सच में मैं तो श्री अरविंद योग से जुड़े जितने लोग हैं उनको एक बार उड़ीसा जाना चाहिए. कैसे साधना करते हैं, तूफान आएगा उड़ जाएगा, उनके मन में शिकन तक नहीं. नेक्स्ट डे आके माताजी की जगह इसको ठीक करना है, पर ये भी नहीं, अरे माताजी ने क्यों नहीं किया, क्या किया, ये सब आता ही नहीं है. और उनकी क्या अनुभव होते हैं, माने वहां जो बताए वो लोग तो आश्चर्य होगा कि अरे ये तो जो बता रहा है तो दिव्य जीवन की बात बता रहा है. सहज स्वाभाविक रूप से तो होता है प्यार, वो जब आ जाए भक्ति, वैसी भक्ति तो कुछ नहीं चाहिए, फिर तो सब भगवान करते हैं. अनेकों लोगों को मैंने देखा है, और साधारण लोग हैं, साधारण जीवन जी रहे, कोई नहीं जानता उनका नाम. ऐसे और कैसे शुरू हुआ था, 2 बातें, नाम जप, पाठ चक्र. पाठ चक्र को बड़े रिलीजियसली लेते हैं, आते नियम से सब. ये नहीं कि अच्छा है एक प्रोग्राम है आज देखते हैं, अच्छा आज नहीं आ पाए जी क्यों, सिनेमा जाना था, ये एकदम नहीं. पाठ चक्र के टाइम पर ठीक आ जाएंगे सब प्रोग्राम. तो हम लोग कहते हैं साधना नहीं होती, साधना ये होती है तब रंग लाती है, नहीं तो फिर वो पाठ चक्र. स्टडी सर्किल, स्टडी सर्किल का हिंदी हो गया पाठ चक्र, वही जो आप लोग भी करते होंगे ना एक दिन, हाँ, स्वाध्याय, हाँ, फिक्स टाइम पे स्टडी सर्किल, घरों घरों में लोगों के खुले हैं. मैं तो गया हूँ, गांव गांव गया हूँ, क्या आनंद आता है. घर में जाओ किसी के, उनके लिए ये सब कुछ नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं. श्री अरविंद आश्रम से कोई माँ श्री अरविंद के बारे में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं. ये भक्ति बड़ी अद्भुत है, कहीं कहीं देखने को मिलती है इस तरह. जैसे अब मध्य प्रदेश में भी भक्ति है, इससे आनंद आता है. ऑफकोर्स वो भक्ति एक बड़ी अद्भुत है, लेकिन कई जगहों पर ये नहीं है, तो फिर वो सूखी जमीन होती है. तो बंजर सूखी जमीन पर आप कितना भी बीज डालो क्या होगा, थोड़ी वो रूट लेगा. भक्ति सींचती है जमीन को.
कई बार कुछ नया काम करने के लिए सोचते हैं या करते हैं, अच्छा लगता है, तब नेगेटिव थॉट्स आते हैं जस्ट उसी समय.
नेचुरली, क्योंकि वो विरोध शुरू हो जाता है. आपने संकल्प लिया नहीं कि सारे टेररिस्ट को पता चल गया, वही उस सब चीजों को माँ की ओर मोड़ देना, माँ से जोड़ देना. माँ मेरे अंदर ये विचार आ रहा है, माँ मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी, तू संभाल इसको. हर चीज को माँ से जोड़ते जाइए, मोड़ते जाइए, यही है योग. मोड़ना और जोड़ना, भयानक से भयानक विचार आ रहा है. माँ मेरे अंदर ये विचार आ रहा है, ये भाव प्रकट हो रहा है, तुझे दे रही हूं. जानिना स्त्रोक थी ना, जो पॉलिश लेडी थी, पोलैंड से आई थी, चिट्ठी लिखती है अपने एक मित्र को. माताजी ने उसके बारे में बहुत अद्भुत बात कही, और केवल 9 वर्ष वो रही आश्रम में, फिर देह पूरा हो गया. चिट्ठी लिखती है, आह कितना आनंद आता है इस योग में, मैंने अब सीखा है यहां आके, यहां का नियम. क्या नियम है, जो भी चीज है, अब मुझे सिर दर्द होता है तो मैं माँ को कहती है, माँ ये सिर दर्द तेरा, तो इसको ले ले, हर चीज को। कितना सरल है, हर चीज उनको देते जाना है, अच्छा बुरा बिना उसको जज किए सोचे समझे देते चले जाना है, ये भी तेरा वो भी तेरा, हार भी तेरी जीत भी तेरी। वास्तव में ये मैटर नहीं करता कि अंत रिजल्ट क्या होगा, मैटर करता है हमने किस तरह का प्रयास किया। ये सब तो फ्रेम है। कई बार हम लोग इसलिए झिझक जाते हैं कोई नया काम करने के पहले कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। अरे नहीं होगा तो क्या हुआ, ये प्रॉब्लम किसकी है, भगवान की प्रॉब्लम है। भगवान का काम कर रहे हो, निष्काम कर्म का तो पहली चीज जीवन में ही होनी चाहिए, भगवान के काम में तो 200% होनी चाहिए। क्या होगा, कोई आएगा नहीं आएगा। कई बार ऐसे भी लोग बोलते हैं प्रोग्राम आप आ रहे हैं हमारे यहाँ, बड़े संकोच से 5-6 लोग रेगुलर हैं शायद, हम लोग वैसे बोला तो है 10-12 लोग जुटा पाएंगे। अरे भगवान के काम में एक जन आ जाए काफी है, एक ही 1,25,000 के बराबर है, भीड़ इकट्ठी करने की चीज थोड़ी है। ये सब तो कभी कैलकुलेट ही नहीं करना चाहिए। कोई नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम 2 लोग बैठकर माता जी की वाणी सुनेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें, आनंद है और भी अच्छा है, गहराई में उतरेंगे। तो ये सब तो सोचने ही नहीं है, कैसा होगा कैसे चलेगा। अगर आ रहे हैं ऐसे विचार, माता जी को ऑफर कीजिए और कूद पड़िए। माता जी कहती है ना ऐसे योग किया जाता है, कूद पड़ो, ये मत सोचो कि उधर चट्टान होगी इधर ये होगा, डूबे तो डूबे, उनका काम करते हुए डूबे। ये पागलपन रंग लाता है, नहीं तो झिझकता रहता आदमी। माँ कहती है हमेशा झिझकता रहता है, समुद्र के किनारे खड़ा होकर मैं पांव रखूं या ना रखूं, रखूं ना रखूं, माँ की वाणी है ना। माँ क्या कहती, कूद पड़ो, और उसके बाद क्या होगा, सिर फूट सकता है, हाँ फूट सकता है। अरे उनके लिए कूद रहे हैं तो वो देखेंगी ना, सिर फूट रहा है तो फूटे। जो होगा देखा जाएगा। एक लोगो आता था ना, डर के आगे जीत है, उसको मैं थोड़ा सा, हाँ स्प्राइट का, उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलता हूं, डर के आगे जीत है ये तो सच है, लेकिन फिर भी उसमें जीत की कामना है, इसको मॉडिफाई करके बोलेंगे हार के आगे जीत है। जिसने प्रयास किया और हारा, वास्तव में हारा नहीं वो जीता, प्रयास करना भी जीत होती है, हार के आगे जीत है। जय मां।